सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा।
शांति। हम डॉक्टर साहब का सबसे पहले एक हाथ की ताली से हमारी इस भट्टी में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको। दिल वाला कहते हैं, मैं आपको दिल वाला कहती हूँ। दिल के डॉक्टर हैं। यू भले आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और अपना जो जे वॉटरमिल हॉस्पिटल है और नीचे जो हॉस्पिटल है, दोनों ही हॉस्पिटल में आप सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन के रूप में आप वहां कार्यरत भी हैं। अपने यज्ञ के भी डॉक्टर हैं, हमारे यज्ञ में जो भाई बहनें, दादियां, बड़े भाई, उनके भी आप सदा अंग संग रहकर उनकी फिजिकली भी संभाल करते हैं। आपकी गाइडेंस काम में आती है सदा। और जो सबसे बड़ी रिसर्च आपने की है कि कैसे जो दिल की बीमारी होती है, आपको पता होगा ना, दिल में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, फिर हार्ट अटैक आ जाता है। तो अक्सर लोग या तो बाईपास कराते हैं, या तो एंजियोप्लास्ट कराते हैं, या तो दवाइयां लेते हैं। तो कैसे बिना ऑपरेशन कराए, बिना बाईपास कराए या बिना एंजियोप्लास्ट कराए, कैसे वो आर्टरीज को, उनके ब्लॉकेजेस को खुला जा सकता है, इसके ऊपर आपने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है। और पिछले कई वर्षों से 10 वर्ष से तो ज्यादा ही हो गए होंगे,
18 वर्ष
हो गए हैं, और जिसको इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है। पहले ग्लोबल हॉस्पिटल में छोटे छोटे बैजेस बना करके ये रिसर्च की गई, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी तो पिछले कुछ वर्षों से शांति वन में कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं इस बात को लेकर के, और अब शायद वो रिसर्च धीरे धीरे बाहर निकलेगी, पब्लिश होगी, तो पता चलेगा
कि क्या
पब्लिश हो चुकी है। हो चुकी है पब्लिश,
वर्ल्ड की टॉप 20 स्टडीज में नंबर वन है,
वर्ल्ड की
टॉप 20 रिसर्च स्टडीज में नंबर वन है पिछले 3 साल से।
वेरी गुड, वेरी गुड, ताली तो बजा दो। वर्ल्ड की टॉप 20 रिसर्च स्टडीज में से नंबर वन ये स्टडी, और बहुतों को फायदा हुआ है इससे, बहुतों को फायदा हुआ है। बाकी तो डॉक्टर साहब खुद ही बताएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप ही करना शुरू कर दे, लेकिन वो सारा कंसल्ट करना पड़ता है आपसे, सारे रिपोर्ट्स निकालने पड़ते हैं, उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है। तो ये एक अपने आप में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाता है, कैसे उसका भी सहयोग होता है उसमें, और जो आपने रिसर्च की है डाइट और मेडिसिन और मेडिटेशन के कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो वो जो रिसर्च हुई है ये बहुत ही फायदेमंद है लोगों को, और काफी लोग इसमें इससे जो हार्ट की जो डिजीजेस हो जाती हैं या डेथ्स हो जाती हैं उससे बच जाते हैं, या बाईपास वगैरह से बच जाते हैं। और इसलिए आपका जो ग्रुप है जो आपके पास आते हैं, वो रेगुलर भी आपके पास आते रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो भले यूं अभी पेशेंट्स उस रूप से नहीं है, लेकिन उस ग्रुप का नाम भी आपने दिलवाला ही रखा हुआ है। इसलिए अपने कभी अव्यक्त बाबा की मुरलियों में देखा होगा, बाबा यूपी ग्रुप से मिले, महाराष्ट्र ग्रुप से मिले, फिर बाबा के पास दिल वाला ग्रुप आता है, तो आपकी बदौलत वो दिल वाला ग्रुप बना हुआ है। बाकी बहुत आपने जैसे आप वहां रिसर्च करते हैं अपने मेडिकल फील्ड में, ऐसे ही स्पिरिचुअल फील्ड में भी आप रिसर्च करते रहते हैं। मैंने कई बार उस चीज का भी अनुभव किया है कि हर बार जब भी मैं बुलाती हूँ तो आपका कोई नया विषय लेकर के आप आते हैं, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ आप किस विषय पर क्लास कराएंगे, तो आज भी उनका नया विषय है। बहुत कम सोल्स होती हैं जो नए विषय को एक्सेप्ट करती हैं, वो समझते हैं कि हमने जो प्रिपेयर किया हो हम वही बातें सुना लें, लेकिन आप हमेशा नए नए विषयों को लेकर के जो स्पिरिचुअलिटी है, जो बाबा ने ज्ञान की बातें बताई हैं, उन पर रिसर्च करके सुनाते हैं। तो आज भी आप एक नए विषय को लेकर आए हैं, आपने भी पहली बार शायद सुना होगा, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म वतन के रहस्य ना? तो हम सुनेंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, तो हम भ्राता जी से सुनेंगे, आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। आप सभी को अच्छा लग रहा है मधुबन में? आनंद आ रहा है। सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म वतन का रहस्य। आप सोचेंगे टॉपिक क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे पास 21 साल पहले जो पहला जो मेरा जिस हार्ट के पेशेंट जब आते थे मेरे पास, और उनको एंजियोप्लास्टी फेल हो जाती थी, बाईपास फेल होता था, और पैसे नहीं होते थे उनके पास, पेशेंट्स मुझे बोलते डॉक्टर साहब हमने अपना घर बेच दिया, गहने बेच दिए वाइफ के, अभी हम क्या करें। आप कहते और दोबारा बाईपास करा लो, दोबारा से एंजियोप्लास्टी करा लो, हम कहां से पैसे लाएं, कहां अब क्या बेचें हम। तो मेरे मन में बहुत संकल्प चलते थे कि, और बाबा ने समय समय पर, जबकि पहली बार जब मैं बाबा से मिला था 86 में, तो बाबा ने मुझे यही कहा था, बच्चे तुम रूहानी औजार बनाओ, रूहानी, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, किसी चीज का आंख का ऑपरेशन करते हैं, हार्ट का करते हैं, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आप रूहानी औजार, हर चीज का ऑपरेशन करने के रूहानी औजार बनाओ, ताकि अंत में ये वाले ऑपरेशन नहीं रहेंगे, ये ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे। उस समय क्या करना होगा, इसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं, टाइम भी ज्यादा लगता है, आपके रूहानी औजार क्या करेंगे, कुछ सेकंड में ऑपरेशन हो जाएंगे, लोग ठीक हो जाया करेंगे। तो पहली बात बाबा ने मुझसे यही कही थी, तो तब से मेरे अंदर लगन लगी कि मुझे ऐसा करना है, शायद बाबा ने इसलिए मुझे ज्ञान में बुलाया है। वैसे हमारे यहाँ घर में गीता पाठशाला 68 में शुरू हुई, कि तुम्हें रेगुलर स्टूडेंट बना 86 में। आपने कभी सुना 18 साल कोई माँ के पेट में रहता है? मैं 18 साल माँ के पेट में रहा, 18 साल मतलब दादियों से मिलते हुए सभी के पास सभी प्रोग्राम देखते हुए 1973 का मेला दिल्ली वाला बॉम्बे वो अपना जो दूसरे मेले जो हमारे पेरेंट्स जाते थे ना जहां पर मुझे साथ ले जाते थे पांडव दिल्ली में हर जगह हम लोग साथ साथ जाते थे। भोग खाने का शौक था ना, टोलियां खाने का शौक था तो वही हम खाते थे है ना। और बहनें हमको स्पेशल स्पेशल टोलियां खिलाती थी, दादियां बहुत प्यार के छोटे पर में थे ना तो हमें इतनी समझ तो थी नहीं, पढ़ाई का शौक ज्यादा था। फिर 86 में शुरू हुआ तो देखो आप 18 साल इतनी जामनी बुद्धि कोई होता है क्या? 18 साल है ना, 18 साल बाबा के पेट में रहा समझो ना, पाना लेतरा पर चला नहीं ज्ञान में ना, और फिर 18 साल के बाद चला और पहली मुरली बाबा ने ये सुनाई। तो ये सूक्ष्म वतन जो है बेसिकली सूक्ष्म शरीर, क्योंकि जब मैंने पहली बार अनुभव किया सूक्ष्म शरीर का, मुझे अनुभव पहली बार हुआ 1991 में 29 अक्टूबर को। 86 में ज्ञान में चला किंतु मुझे अनुभव नहीं होता था सूक्ष्म शरीर। बहने संदेश लेकर के आती थी गुरुवार का, तो मैं देखता बहने संदेश ले आती हैं, कहते सूक्ष्म वतन में बाबा बैठा है, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है और वहां पर ऐसे ऐसे। मैंने कहा मेरे को तो कुछ अनुभव नहीं होता, मैं तो बहुत अच्छे से योग करता हूँ, बहुत अटेंशन रखता हूँ, कभी अमृत वेला मिस नहीं करता, कभी मुरली मिस नहीं करता, हर बात में बहुत सिंसियर था। तो मेरे को तो अनुभव नहीं होता, मैं तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाता हूं। तो 91 में पहली बार मुझे अनुभव हुआ सूक्ष्म वतन का, सूक्ष्म शरीर का और सूक्ष्म वतन का। तो मैंने क्या देखा कि जब मुझे, मैं यहीं पे मधुबन में आया हुआ था हॉस्पिटल ना, जो अपना ग्लोबल हॉस्पिटल शुरू हुआ था 91 में शुरू हुआ था, 24 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ। तो मेरे को कहा गया था कि आप कम से कम 2 हफ्ते शुरू में दिल्ली से छोड़ के यहां पर आ जाओ और इस हॉस्पिटल में थोड़ा सा आप पेशेंट देखेंगे तो लोग आपको सब जानते हैं, क्योंकि मैं यहां पर आता रहता था यूजली और आप सबको आसपास से सब लोग आपको जानते हैं और आपके नाम से लोग सभी आएंगे, हॉस्पिटल में थोड़ा सा रश रहेगा तो आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, 2 हफ्ते के लिए मैं छुट्टी लेके आ गया दिल्ली से और मैंने शुरू किया यहां पर। तो 24 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ, 23 को मैं आया था, 29 को मुझे पांडवन से ही लंच करके हम बाहर जा रहे थे, गेट पर ही मुझे पेट में दर्द शुरू हो गया और पेट में दर्द शुरू हुआ तो मुझे, मैं समझा कि मुझे अपेंडिक्स का दर्द उठा है। तो मैं अपने ज्ञान विज्ञान भवन है ना, ज्ञान विज्ञान भवन राउंड नंबर 6 में ठहरा हुआ था मैं, तो वहां बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में पहुंचा। फिर वॉमिटिंग वगैरह हुई और जब शाम को 4 बजे के आसपास फोन आया मुझे हॉस्पिटल से, पांडवन का जो पैरे पे भाई था वो आप मेरे कमरे में आया। उस समय मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन भी बहुत थोड़ी सी होती थी ना, 91 की बात कह रहा। तो उस समय जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता आपका ना फोन आया है हॉस्पिटल से, आपके पेशेंट वेट कर रहे हैं, क्योंकि लंच में 1 बजे आया था। तो उन्होंने फिर कहा नहीं 4 बजे आपके पेशेंट, फिर मैंने उसने देखा कि मतलब आप, उसने देखा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे वॉमिटिंग भी हुई थी और पेट में दर्द बड़ी जोर से हो रहा था। तो उसने तुरंत फोन किया वहां पर हॉस्पिटल में कि ऐसे ऐसे बात है, वहां तो डॉक्टर गुप्ता की तबीयत ठीक नहीं है और इससे उनको पेट में दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में डॉक्टर्स आ गए, नर्सेज आ गए हॉस्पिटल से, मेरे कमरे में ही आ गए और जो एक इमरजेंसी बैग जो मैंने दादी के लिए बनाया था, दादी प्रकाश होने के लिए इमरजेंसी बैग मैंने पालनपुर से वो खरीदा था बैग, और उसमें सिर्फ दवाइयां अपने हाथ से लगाई थी, वो दवाइयां भी उसमें लगा, वो बैग भी लेके आ गए थे इधर से पांडव भवन से वो लोग। और मैंने जो है वो बिल्कुल उन्होंने दवाइयां वगैरह दी, दर्द ठीक नहीं हुआ। 8:30 बजे तक उन्होंने डिसाइड किया शायद अपेंडिक्स फट जाएगी, फट गई होगी नहीं तो, क्योंकि बहुत दर्द था। और फिर उन्होंने इंजेक्शन लगा, उन्होंने पहले पेनिसिलिन का मुझे टेस्ट दिया और बाद में टोटल डोज, पेनिसिलिन से रिएक्शन नहीं हुआ टेस्ट डोज से, किंतु जब टोटल डोज लगा रहे थे तो मेरे को रिएक्शन हो गई, मेरा सांस रुकने लगा, पसीना आने लगा और घबराहट होने लगी। मेरा ये हाथ यहाँ आ गया, सांस घुट रहा था तो मैंने हाथ यहाँ रखा, साथ में मेरे डॉक्टर जो प्रताप मिड्डा थे जो हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट साथ में बैठे थे। तो मैंने कहा प्रताप भाई मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसे मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने बोला कि मुझे सांस घुट रहा था, मुझे फील हो रहा था कि मैं अभी बस सही छोड़ने वाला हूँ। तो जैसे मैं थोड़ी देर में देखा तो मैं छत के पास था, मैं छत के पास पहुंच गया और मैंने वहां से अपनी बॉडी को देखा ना, हाथ मेरा यहां पे था, बॉडी का हाथ यहां पे था और मैं छत के पास था और छत के पास बिल्कुल ऐसा ही था जैसा ये शरीर, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा कैसा जैसे आंख भी नाक, मुझे लग रहा है मैं हूं यहां पर और मैं यहां से देख रहा हूं, ऊपर से नीचे से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, नीचे देख रहा हूं, अपनी बॉडी को देख रहा हूं। डॉक्टर नर्सेस टेंशन में है सभी और वो सब घबराए से हुए, क्योंकि एक एमडी डॉक्टर अगर शरीर छोड़ दे हॉस्पिटल में था, इट वॉज इन रूम में था और पेनिसिलिन के रिएक्शन में तो रूम में मर ही जाते हैं लोग, तो मैं फिर कमरे छत से, मैं उससे नहीं गया, दरवाजे से नहीं गया, छत से जैसे निकल गया, छत के ऊपर एक, बाद में पता लगा उसके ऊपर एक फ्लोर और भी था, तो मैं छत से सीधे स्पेस में चला गया। ऐसे में लगा कि मैं स्पेस में जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जो मैं हूं वो जा रहा है, और ऊपर से ऐसे लगा कि ऊपर से ऊपर ऊपर जाता जा रहा हूं। फिर मैं देखा कि ब्रह्मा बाबा जैसे बैठते ना, बैठे होते ना उस पोज में, तो ऐसे ही बाबा ऊपर से नीचे, जैसे ब्रह्मा बाबा नीचे की तरफ आ रहे। तो कहते हैं ना संकल्पों से बातचीत करते हैं, मुझे नहीं पता संकल्प से कैसे बातचीत हो सकती है। तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया बाबा ने, जैसे मुझे हाथ से इशारा किया, मुंह से कुछ नहीं हो रहा, किंतु मुझे कहा कि जैसे हाथ से इशारा किया बाबा ने, जैसे कहा कि बच्चे तुम कहां जा रहे हो। मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा मुझे कह रहे हैं बच्चे तुम कहां जा रहे हो। मैंने कहा बाबा मैं तो, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं तो आपके पास आ रहा हूं। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम्हारा टाइम पूरा नहीं हुआ है, और ये मुंह से बात नहीं हो रही है, संकल्पों से बातचीत हो रही है। इशारा पहले हाथ से किया, बाकी फिर इशारा से संकल्पों से बातचीत हो रही है, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे। वो भी मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, मैं भी मुंह से कुछ नहीं बोल रहा। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम कहां जा। मैंने कहा बाबा मैं आपके पास आ रहा हूं। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी तुम्हें बहुत सेवा करनी है, वापस जाओ। और मैं वापस अपनी बॉडी में आ गया। मैंने वहां कोई और बात नहीं की, नमस्ते किया, कुछ नमस्ते की, कुछ भी नहीं किया। मुरली में नमस्ते करते हैं रोज, मैं नमस्ते भी नहीं की, कोई बात और भी नहीं पूछी है ना, कुछ भी नहीं कहा। वो तुरंत बॉडी में आ गया, और बॉडी में आ गया तो मेरा हार्ट उसमें बहुत तेजी से धड़ 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 ऐसे फास्ट चल। तो 8:30 के लगभग बात थी, क्योंकि 8:30 का टाइम मैंने देखा था घड़ी में जब मुझे इंजेक्शन दे रहे थे, और 11:15 मुझे होश आई रात को। कमरे में लाल लाइट हुई थी। निर्भय भाई मेरे सिर पे हाथ रख के बैठे थे, बहुत सारे भाई बहन कमरे में थे, वो सब मेडिटेशन कर रहे थे। तो ये था मेरा पहला सूक्ष्म शरीर का और सूक्ष्म वतन का अनुभव, है ना। 91 5 साल लगे मुझे अनुभव करने में। आप लोग तो मतलब बहुत फास्ट है, क्योंकि मेरे को तो 5 साल लगे अनुभव करने में। सोचो कितना बुद्धि होगा मैं, तो मतलब कोई हार्ड बुद्धि होता है ना, चामड़ी बुद्धि वाले, उनको अनुभव कराना पड़ता है मुश्किल से, है ना। हम लोग जैसे एक बार एक पेशेंट का और याद है, वो जीएम थे भिलाई स्टील प्लांट है ना, उसके जीएम थे, कैट हार्ट के प्रोग्राम में आए थे, दिल वाला प्रोग्राम में आए थे। उनकी भी आर्टरीज ब्लॉक थी, बाईपास फेल हो गया था। तो वो जो भी ज्ञान, हम वो सबसे पहली सीट पे बैठते थे, ऐसे पहले सीट पे कोने पे, और जैसे उनको जितना मर्जी समझाओ, जितना मर्जी बस आत्मा का लेसन भी परमा सब कुछ सुना दिया, तो कहते मेरे को उस समझ में नहीं आया, कुछ अनुभव नहीं होता। चौथा दिन आ गया, फोर्थ डे ऑपरेशन डे होता है। तो उनको जो है हमने बताया कि ऐसे वो क्या हुआ अचानक में ज्ञान, सूरज भाई ना, सूरज भाई को जानते होंगे, सूरज भाई की क्लास थी वहां पर ज्ञान सरोवर में, हॉस्पिटल में पेशेंट रखते थे उस समय। तो सूरज भाई ने कहा कि आपने यहां ले आओ, फिर यहां पर हम लोग, मैं क्लास भी करा दूंगा, लोग ज्ञान सरोवर तो घूम भी जाएंगे, खाना ब्रेकफास्ट भी करा देंगे। तो हम वहां चले गए, मैं पीछे से अपनी कार लेके फिर पीछे पीछे गया, और मैं जैसे ये आप लोग बैठे मैं यहां बैठ गया, और वो पेशेंट जैसे यहां बैठा ना, तो जैसे थोड़ी देर में क्या हुआ, वो क्लास चल रही थी, मैंने देखा वो उसकी गर्दन लटक गई ऐसे। तो मैं देखा, मैं उठ के गया, मैंने उसका देखा, उसकी नब्ज भी नहीं और पीपी भी नहीं, पेशेंट जैसे चला गया जैसे। तो मैंने उसको लिटाया, उसको मसाज किया, हार्ट कार्डिक मसाज किया, उसकी दवाइयां थोड़ी दी, तो वो चालू, हार्ट वापस चालू हो गया। तो हार्ट चालू हो गया, और फिर मैंने उसको, उसने आंख खोली, आंख खोलते ही बोलता, डॉक्टर साहब मुझे सब समझ में आ गया, मैं सब कुछ देख के आ गया। आप जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, सच कह रहे थे, मैं सब कुछ देख के आ गया। मैंने कहा तू पहले ही समझ लेता भाई, इतना सब क्यों करने की आवश्यकता है ना। सुना? तो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म शरीर, सुनना चाहते हैं? क्योंकि ये जीवन मैंने तो बहुत, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन भी होता है ना, जो ऑपरेशन हम एक दिन हमारा ऑपरेशन डे होता है, अभी भी आज से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है, पेशेंट आ गए हैं वहां पर। तो सूक्ष्म शरीर जो है, जो इस पर ऑपरेशन भी सूक्ष्म शरीर पे होता है, बाबा सूक्ष्म शरीर पे ऑपरेशन करते हैं, स्थूल शरीर का ऑपरेशन नहीं करते हैं। और सूक्ष्म शरीर में ऑपरेशन होने के बाद, एनर्जी ब्लॉकेज निकलने के बाद, फिर अगर वो आदमी उसको एक्यूरेट फॉलो करता 3 महीने 6 महीने तक, तो उसकी बॉडी में ब्लॉकेज निकल जाते हैं। ब्लड प्रेशर डायबिटीज का मरीज होता है, तो उसको उस पे उसका प्रयोग करता है, तो बाद में ब्लड प्रेशर डायबिटीज भी कंट्रोल में 3 महीने में ठीक हो जाती है। ऐसा होता है, तो तब मुझे जो है मतलब ये तो मतलब सूक्ष्म शरीर पे ऑपरेशन, और कहां पे ऑपरेशन होता है, सूक्ष्म वतन में ऑपरेशन होता है, यहां नहीं होता है। क्या होता है? सूक्ष्म वतन में ऑपरेशन होता है, बाबा की गोद में ऑपरेशन होता है, बाबा की गोद ऑपरेशन टेबल होती है। तो मुझे इसका अनुभव कैसे हुआ, इस तरह से अनुभव हुआ सूक्ष्म वतन का और सूक्ष्म शरीर का ना, क्योंकि वो हर प्रोग्राम में अनुभव होता है ना। कि तो मैं यूजली क्लासेस पे कराता नहीं, किंतु मैं कई बार इशारा देता हूं सिर्फ ना। तो बेसिकली जो मैं बता रहा हूं मुरलियों के आधार पे बता रहा हूं, क्योंकि बाबा कहते सिर्फ मेरे से सुनो और जो मेरी सुनाई बातें दूसरे को सुनाओ ना, और कुछ बाकी सब असत्य है। सत्य क्या होता है, व्हाट इज ट्रूथ? सत्य वो जो कभी बदले नहीं, सत्य वो जो कभी मरे नहीं, है ना, एटर्नल है। सत्य हमेशा एटर्नल है, सत्य कभी बदलता नहीं और सत्य कभी मरता नहीं। सत्य अविनाशी होता है और कभी बदलता नहीं। जैसे आत्मा शरीर के पहले भी है और शरीर छोड़ने के बाद भी, शरीर मर जाता है, शरीर मर जाता है, बदलता भी रहता है, किंतु आत्मा वैसे की वैसे दिखाई देता है। शरीर में आने से पहले भी उतनी होती है और शरीर छोड़ने के बाद भी उतनी होती है, और बीच में बढ़ती घटती नहीं है, है ना। तो आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन संबंध सत्य है, सर्व संबंध है वो सत्य है, और डिफॉल्ट ड्रामा ये संसार रूपी नाटक सत्य है। हम ज्ञान को सार रूप में कहते हैं ना, ABCD, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। एंड व्हाट इज राजयोग मेडिटेशन? राजयोग मेडिटेशन इज नथिंग बट इस ABCD को, ज्ञान को, बाबा की मुरली। बाबा की मुरली क्या है बेसिकली? बाबा की मुरली में क्या होता है बताओ? आज की मुरली में क्या बातें थी? चार ही बातें होती हैं, उसमें भी ABCD, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा से संबंध का, संबंध का ज्ञान, एक एक संबंध की अनुभूति। बाबा कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी बाप टीचर, कलकत्ता 3 इंजन, बाप टीचर सतगुरु, आज कुछ और बात। तो बाबा अलग अलग तरह से एक एक संबंध की बात, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान, मतलब ड्रामा। ये चार ही बातों को बाबा डिफरेंट डिफरेंट लहरों में रमणीक तरीके से हमको समझाते हैं, राइट। तो जितना, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नथिंग बट रिवाइजिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। ये ट्रूथ है, ABCD ट्रूथ है, ये बाबा की मुरली ट्रूथ है, सत्य है, परमात्मा सत्य है, उस जो महावाक्य भी सत्य है, राइट। तो इसको बार बार अनुभव करते रहना, रिवाइज करते रहना, रिवाइज में मनन करते रहना और रियलाइज अनुभव करते रहना। मैं आत्मा हूं ये ज्ञान है, मैं आत्मा हूं अनुभव करना योग है। कई लोग कहते हैं मैं योग सिखाऊ ना, योग कोई सिखा नहीं सकता है, आपको खुद करना है। कोई आपको योग सिखा सकता है? कोई किसी को योग सिखा नहीं सकता है। अब कोई कहेगा कि मुझे खाना खाना सिखाओ ना, अब खाना खाना कोई सिखाएगा क्या? खाना तो मुंह में रख दिया, फिर चबाना किसको है, टेस्ट किसको करना? आपको खाना भी चबा के दे दो ना, खाना पचा के दे दो ना मेरे को। खाना कोई आपको पचा के दे सकता है? चबा के तो शायद दे भी दे, आपके दांत ना हो तो ठीक है, आपको मिक्सी में पीस के दे देंगे, है ना। किंतु फिर पचाना तो आपको ही ना, या कोई वो भी पचा के भी दे दो आपको, तो पचाना तो कुछ पड़ेगा। ऐसे ही योग कोई सिखा नहीं सकता है, योग करना है, ज्ञान को अनुभव करना ही योग है, राइट। योग क्या है? याद क्या है? बाप को, बाप से एक संबंध का अनुभव करना ही योग, याद है, राइट। मुख्य 9 संबंध है ना बाबा से हमारे, बाप माता, पहले माता का संबंध है, फिर बाप का संबंध, फिर टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु माना बड़ा भाई का संबंध, सखा का संबंध, दोस्त साजन का संबंध, सज्जन का संबंध और बच्चे का संबंध। 9 संबंध तो मुख्य है, किंतु हर संबंध हमारा उनके साथ हो सकता है, राइट। 9 संबंध का अनुभव बहुत गहरा होना चाहिए हर आत्मा को, बहुत गहरा, वो निरंतर योगी रह सकता है। चलिए चलते सूक्ष्म शरीर पे चलते पहले ना। तो अभी जो है, तो ये है मतलब योग, योग का मतलब बेसिकली ये है, इसको रियलाइज करते रहो और रिवाइज करते रहो, मुरली है ना, कुछ और नहीं है योग, कुछ नहीं है। अच्छा, हम क्या आधा घंटा के योगी हैं सुबह शाम? हम आधा घंटा सुबह शाम योग करते हैं हा? सांस कितने देर लेते हो आप? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बाकी टाइम सांस नहीं लेते? नहीं, हम सांस 24 घंटा लेते हैं ना, सोते सोते भी लेते हैं ना, या सोते सोते सांस बंद कर देते हो, चलो ये आवश्यकता नहीं, सो रहे हैं ना, सांस का स्विच ऑफ करके सो जाओ, नहीं ऐसा। तो श्वासोश्वास हम, तो ये बेसिकली मेडिटेशन क्या है, श्वासोश्वास 24 घंटा हम ये बात को अंदर रहे, रिवाइज हो रही। मैं आत्मा, जैसे हम कहते हैं मैं सतीश गुप्ता कितने घंटे हूं, आधा घंटा सुबह शाम, तो 24 घंटा, ऐसे मैं आत्मा कितने घंटे हूं, तो ये अवेयरनेस रहे कि मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, और आत्मा परमात्मा सात गुणों का सागर है, पावर हाउस है, और वो मेरा बाप होने के नाते मेरे उस पर अधिकार है, उस प्रॉपर्टी मेरा अधिकार, वो मेरे अंदर आ रही है, वो शक्ति में मैं अगर आज्ञाकारी बनू उसके शरीर में चलू, तो वो शक्तियां मेरी हो गई, वो सातो एनर्जी मेरी हो गई। आज्ञाकारी ना बनू, ऐसे ही बैठ के योग करता रहूं, चाय पीता रहूं, कोल्ड ड्रिंक पीता रहूं, गुस्सा करता रहूं और बैठ के योग करूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, आएगा कुछ आएगा। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा ना हूं और मैं कितना मर्जी योग करूं, सुबह से लेकर शाम तक करता रहूं, तो भी कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे को अपने आप प्रॉपर्टी देता है बाप, और बाबा की आज्ञा क्या है, अपने को आत्मा समझ, आत्मा समझ के चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते मुझे याद करो, या मुद्रा लगा के योग करो, कैसे करते हैं पता भी नहीं, पता नहीं ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करके बैठते हैं। अच्छा मतलब ऐसे करके बैठे तो योग है, ऐसे किया तो अब गाड़ी चलाते समय योग नहीं होगा, खाना बनाते समय योग रहेगा, आपको तो इसका अभ्यास है ना ऐसे करके बैठने का, तो योग होता है, और बाकी टाइम खाना बनाते समय क्या होगा, ऐसे ऐसे रोटी बनाएंगे आप, कपड़े धोएंगे, गाड़ी चलाएंगे ऐसे। हमारा योग बहुत सिंपल है, हर समय ये अंदर से अनुभव होता रहे मैं आत्मा, उसके लिए हमें कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, कोई पोज की आवश्यकता नहीं है, कोई लंबा सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, हर समय आंखें खोले हर काम करते हमें आवश्यकता होनी चाहिए नहीं। तो योग का मतलब पहले रियल अर्थ समझना, क्योंकि योग बहुत जरूरी है, याद बहुत जरूरी है, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने के, सूक्ष्म शरीर बनाने के लिए भी, इसलिए मैंने कहा पहले मैं आपसे थोड़ा याद पे बात करता हूं, तो ये बहुत आवश्यक है ना? अब जो है सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म शरीर क्या है, आत्मा तीन सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, और एक स्थूल शरीर है, और हम ये भी जानते हैं कि आत्मा के पास दो शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है एक स्थूल शरीर है, राइट। तो सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, ये आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, ठीक है। किस चीज का बना हुआ है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और संस्कारों का, ठीक है। सूक्ष्म शरीर हमारा तीनों चीज का बना हुआ है, अगर हमारी तीनों चीजें पावन सत्व प्रधान है, मन भी पावन सत्व प्रधान, बुद्धि भी पावन सत्व प्रधान और संस्कार भी पावन सत्व प्रधान, तो मेरा शरीर लाइट का बना हुआ है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर क्या है, लाइट का बना हुआ है। अगर मेरी बुद्धि तमो प्रधान है, मन तो तमो प्रधान है और संस्कार भी तमो प्रधान है, तमो प्रधान सत्व प्रधान शब्द कहां से आया, सत्व माना सात, प्रधान माना भरपूर, तो सात से भरपूर मतलब सात ऊर्जाओं से भरपूर, राइट। सत्व प्रधान सातों एनर्जी से भरपूर स्थिति को कहते सत्व प्रधान, और सत्व प्रधान से जो स्थिति बनती है उसको हम कहते पावन। पावन एक स्थिति है, पवित्रता एक गुण है, जब सातों गुणों से भरपूर है तो वो स्थिति पावन स्थिति है। जब आत्मा में सातों गुण आधे से कम हो जाते हैं तो रजोमना श्याम, तो रजोमना 50% से कम एनर्जी हो गई तो रजो प्रधान हो गई, और जब तमोमना रात अंधेरा, जब आत्मा सातों गुणों से लगभग ना के बराबर रह जाते सातों गुण, उसको हम कहते हैं पतित स्थिति, पावन पतित, राइट। तो ये जो जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर हो गई तो उसका सूक्ष्म शरीर कैसा हो गया, कैसा हो गया, लाइट का शरीर बन गया, ठीक है। अगर मेरे बुद्धि में तमो प्रधान है, बुद्धि में कुछ देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, देह के पदार्थ भरे हुए हैं, तो क्या हुआ, मेरी बुद्धि तमो प्रधान हो गई, पतित हो गई। मेरा मन क्या हो गया, मन में भी वही भरा हुआ है और संस्कारों में भी वही भरे हुए हैं, देह के संबंध उन्हीं की याद समाई हुई है, देखे स्वभाव संस्कार, देखे पदार्थ भरे में, तो अब मेरी बुद्धि संस्कार हुई, तो मेरी अब क्या हो गया, मेरा अब ये लाइट की बॉडी नहीं है, किसकी बॉडी बन गई, ये भूत की बॉडी बन गई, किसकी बन गई, घोस्ट, राइट, अंधेरा, काली काली, काली काली थी, मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट, तो काला काला दिखाई दे, काला काला से मतलब भूत के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी मन के, मन बेसिकली सूक्ष्म से कुछ और नहीं, मन है, बुद्धि तो सेंट्रल है, संस्कार मन का ही एक एस्पेक्ट है, बेसिक जो बात है वो सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं, मन ही है। क्या है, मन है, और मन में चार एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन से, उसे इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, माना संकल्प, ई ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, ए ए फॉर एटीट्यूड्स माना वृत्ति, और एम एम फॉर मेमोरीज माना स्मृतियां, टीम, राइट। तो अगर आपकी टीम पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है, तो आपका क्या है, शरीर कैसा है, सूक्ष्म शरीर लाइट से भरा हुआ, लाइट का सूक्ष्म शरीर, राइट, ठीक है। और आपकी टीम नेगेटिव है तो क्या है फिर आपका, आपका सूक्ष्म शरीर घोस्ट के समान। आप मान लीजिए रात को बाथरूम के लिए उठते हैं ना, यूजुअली वॉशरूम के लिए जाने के लिए उठते हैं, रात को 2 बजे उठे आप, बाथरूम की तरफ गए, वॉशरूम की तरफ, आपको काला काला कोई भूत दिखाई दे जाए तो क्या होगा, क्या होगा, आपको अभी 2 बजे तक तो नींद आई थी, 2 बजे के बाद फिर नींद आएगी, क्योंकि भूत के मन में बहुत सारे विचार, मतलब भूत कौन है, जिसके मन में बहुत विचार, विचारों की स्पीड बहुत फास्ट है, मेमोरीज वो नेगेटिव भरी हुई है, वृत्ति दैहिक है, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाली है, और भावना नेगेटिव है, तो उसके विचारों की स्पीड फास्ट, इसलिए आपका आपका मन भी क्या होगा, भटक जाएगा। और फरिश्ता कौन है, अगर आपको कोई, आप बाथरूम की तरफ जाओ उठ करके रात में, और आपको कोई फरिश्ता दिखाई दे जाए, तो लाइट की बॉडी वाला, आपको 2 बजे तक नींद नहीं आई थी, किंतु अभी आप जाओगे तो आपको क्या, वहां से आके आपका मन टिक जाएगा, आपको नींद बहुत बढ़िया नींद आएगी, 2 घंटा जो सोओगे 4 बजे तक बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी, क्योंकि फरिश्ते का मन टिका हुआ है, संकल्प चलते नहीं है, बहुत स्लो संकल्प है, तो आपके भी संकल्प टिक जाएंगे, राइट। क्या बनना है, फरिश्ता बनना है कि भूत बनना है, घोस्ट बनना है, तो हम बाबा के बच्चे थे, सब फरिश्ता बनने वाले ना, ब्राह्मण से फरिश्ता। तो ये जो अब आत्मा जो यहां पर है, लगभग ना यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, दोनों ब्रेन से, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, उसके सेंटर में हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के सेंटर में आत्मा का निवास था। आत्मा से 7 एनर्जी निकल रही है, ज्ञान, पवित्रता, ज्ञान माना बेसिकली क्या, ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर संबंध शिव बाबा के साथ है, और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक है, इस नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले करेगी, और शिव बाबा इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है इस ड्रामा का, और हर आत्मा को इस, उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है, हम लोग क्या सोचते हैं, दुनिया वाले क्या सोचते हैं, हम तो कहते हैं अच्छा हुआ, और दुनिया वाले क्या कहते हैं, मेरे साथ जो हुआ अभी तक अच्छा नहीं हुआ, उसने धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया, उसने मेरे पैसे मार लिए, उसने मेरे को बदनाम किया, है ना। 90% विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यहीं से आ रहे हैं, राइट, उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसी से हमारी सारी प्रॉब्लम आ रही है, राइट। और हमने, हमारे मन में क्या आ गया कि हमारे मन में, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको, बाबा ने कोई मुरली में कहा था, अगर आपको कोई मारता, आपका पति आपको मारता है, क्यों मारता है, याद है एक मुरली में आया था, क्यों, पिछले जन्म में आपको ने उसको मारा हुआ है, नहीं? कोई आपको गाली देता है तो गाली गाली क्यों दिया उसने, क्योंकि आपने उसको गाली दी हुई है। कोई आपको धोखा देता है तो उसने धोखा क्यों दिया, क्योंकि आपने उसको धोखा दिया हुआ है। वो कर्मों का हिसाब किताब है, खाली कर्म की, कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। कर्मों का हिसाब क्या होता है, अगर 100 साल पहले आपने किसी से 1000 रुपया उधार लिया, और वो आपका, वो व्यक्ति जिस दोस्त था आपका, उसे आपने उसको वापस नहीं किया, और 100 साल के बाद आपका वो अभी क्या बन के आ गया, या तो पति बन के आ गया, या पत्नी बन के आ गया, बच्चा बन के आ गया, बेटी बन के आ गया, बिजनेस पार्टनर बन के आ गया, व्हाटएवर, अब बन के आ गया, तो अभी आप क्या करेंगे, वो आपको कहेगा मेरे पैसे वापस करो, हजार रुपए तो मूलधन हुआ ना, और ब्याज कितना हो गया? ब्याज मैंने हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट शांतिवन में उनसे पूछा मैंने कितना ब्याज बनता है पहले, मतलब 100 साल का 1000 रुपए का, तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब पहले ब्याज की रेट बहुत ज्यादा थी ना, 20% के आसपास होती थी, और चक्रवर्ती ब्याज लगा के उसने बताया कि 52 करोड़ 48 लाख रुपए बनता है, 52 करोड़ 48 लाख रुपए। तो 1000 रुपए अगर आपने लिया था किसी से 100 साल पहले, कहते गीते ना 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी है, ऐसे बने ना, नहीं प्यार था तभी तो साथ साथ आए ना, अब पति पत्नी साथ क्यों आए, वही पति क्यों मिला, वही पत्नी क्यों मिली, दूसरे क्यों नहीं मिले, पड़ोस में भी तो लड़कियां थी ना, पड़ोस में भी लड़का था, वो भी अच्छे लगते थे हमको ना, नहीं उनसे क्यों नहीं शादी हो गई, 100 किलोमीटर दूर क्यों शादी हुई, 50 किलोमीटर दूर क्यों शादी हुई, तो उससे हिसाब किताब है ना, पिछले लोगों का हिसाब किताब है ना, पति पुलिस कमिश्नर है सारा शहर उसे लड़ता है, घर में आके वो क्या करता है, घर में अपनी पत्नी से लड़ता है, उसका बच्चा उसकी नाक मूछ खींच लेता है, कान खींच लेता है, कान नाक खींच लेता है, सारे शहर में कोई व्यक्ति इसकी हिम्मत नहीं उसको नाक खींच ले, उसकी मूछ खींच ले, हिसाब किताब है ना, उस बच्चे ने पहले उसको बच्चे की पहले उसने मूछ खींची होगी तो अभी उसकी मूछ खींचता है नहीं, तो मतलब वो हिसाब किताब है ना। और फिर सारा कुछ करने के बाद सपोज आपने एक बच्चे को पढ़ा लिखा दिया सब कुछ, 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया पढ़ाई लिखाई में, तो बच्चा खुश होता है क्या? आप पूछो बेटा कैसे, पापा क्या मेरा जीवन ही खराब, आपके यहां जन्म लेके मेरा जीवन ही खराब हो गया, पति पत्नी आपस में पूछ के देखो आप संतुष्ट हो मुझसे, क्या संतुष्ट, जीवन बर्बाद हो गया मेरा, दुख सुख देखा ही नहीं, एक दिन सुख नहीं देखा तुम्हारे साथ रह के मैंने, नहीं क्योंकि इतना बड़ा हिसाब किताब है, एक गाली दी थी 100 साल पहले अभी कितनी हो गई, ब्याज लगाओ, वो आपको 1000 गाली देके भी पेट नहीं भरेगा आपका, उसका हिसाब किताब पूरा नहीं होता है ना, नहीं होता है क्या, होता है 1000 गाली खा के, धोखा एक बार दिया हुआ अभी कितने बार धोखा खा चुके, पूरा ही नहीं होता उसका धोखा है ना, और फिर हम बुद्धू बन जाते हैं, एक बार धोखा खाया फिर दोबारा उसने फिर कहता अच्छा नहीं कोई प्रॉब्लम, फिर धोखा खा लेते, फिर धोखा उसी से धोखा खा रहे हैं बार बार, क्यों खा रहे हैं, ब्याज के रूप में खा रहे हैं, ठीक है, समझाए क्यों खाते हैं, कुछ भी किसी दोष किसी का नहीं है, दोषी कोई नहीं, कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसका दोषी, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि बाबा आप सर संबंध से मेरे साथ है, और हर सेकंड मेरे साथ है, हर संकल्प में मेरे साथ है, हर श्वास में मेरे साथ है, और हर जगह मेरे साथ है, जहां कोई नहीं आ सकता वहां भी मेरे साथ है, और मेरे को डायरेक्शन दे रहा है, हर जगह गाइड कर रहा है, बच्चे ऐसे कर लो, बच्चे मैं ना करूं मेरी मर्जी है, किंतु बाबा मुझे गाइड करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा, और जो होने वाला वो तो हम जानते हैं क्या होने वाला है, सबसे बेस्ट होने वाला है, 4950 साल किसी की दवाई नहीं खानी पड़ेगी किसी डॉक्टर की, लास्ट 50 साल में दवाइयां आती हैं, तो बाकी दवाई नहीं खानी पड़ेगी, 4950 साल 3-4 हजार साल कमाना नहीं पड़ेगा है ना, कम से कम कुछ कमाना नहीं पड़ेगा, मस्ती से खाएंगे पिएंगे कुछ भी नहीं करना, मस्ती रहेगी, ठीक है, क्या ख्याल है, तो बेस्ट होने वाला, तो ये जितना ABCD को रिवाइज और रियलाइज किया ना, इससे क्या आया, इससे मन पवित्र हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई, इससे पवित्रता माना अभी आपके अंदर आप सत्य स्वरूप को देख रहे हो, एक दूसरे के अपने भी सत्य स्वरूप को देख रहे हो और दूसरे के सत्य स्वरूप को भी देख रहे हो और उसमें व्यवहार कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति के असत्य स्वरूप, गुस्सा जो है असत्य स्वरूप है, अभी है नहीं थोड़ी देर में नहीं है, शांति सदा है ना, पानी गर्म हुआ उबला थोड़ी देर में रख दो फिर ठंडा हो जाएगा, गर्म नहीं रहेगा, नहीं रहेगा गर्म, तो शांति मेरा गुण है, क्रोध मेरा गुण नहीं है, तो जो सत्य स्वरूप में व्यवहार कर, ये पवित्रता है, बच्चा है आपका बच्चा, बच्चे को बच्चा समझ के व्यवहार करना ये अपवित्रता है, बच्चे को बच्चा समझ के व्यवहार नहीं, आत्मा समझ के व्यवहार, पति को पति समझ के व्यवहार करना, पत्नी को पत्नी समझ के व्यवहार करना, ये क्या है, अपवित्रता है, क्या समझे, आज के बाद क्या करोगे, सत्य स्वरूप समझ के सत्य स्वरूप में व्यवहार करना तो पवित्रता है, जैसे बाबा हम सबको आत्मा देखता है ना, उसको हर बच्चा एक से एक प्रिय है क्योंकि हमारे चमकता स्वरूप अनादि और आदि स्वरूप देखता है, तो हमें वो अनादि आदि स्वरूप देख करके व्यवहार करना है, एटर्नल स्वरूप देख के। ये नहीं, ये वाला ट्रांसजेंट नहीं, विकारी वाला नहीं, ट्रांसजेंट वाला नहीं, सत्य स्वरूप। अनादि में कैसा था, ऊपर कैसा था, और शुरू में आया तो कैसा था। अभी गंदा हो गया, काला पीला हो गया, वो अभी तो पानी में धोएंगे फिर साफ हो जाएगा। नहीं, ज्ञान पानी में धोएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञान अमृत में धोएंगे तो साफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये जो है हमारा अंदर से ये होना चाहिए, ठीक है। तो जितना हम इसका अभ्यास करते जाते हैं, तो ये आत्मा के साथ एनर्जी निकलते, इसी को हम दिल कहते हैं। यहां पर वो दिल, मैंने दिल माना कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस ये दिल है। तो जिस दिल में एबीसीडी है ना, वो सच्चे दिल, साफ दिल है, जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, पवित्रता भरी, शांति माना सिर्फ पॉजिटिव संकल्पों में भ्रमण करना, सत्य संकल्प में भ्रमण करना, और लव माना सब कुछ एक्सेप्ट, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो। ये नहीं ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, सबको एक्सेप्ट कर लो, चाहे वो कैसा भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, उसने कुछ भी किया हो मेरे साथ, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको मतलब अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन, बिना शर्त के आदर के साथ सबकी केयर करना। जैसे माँ अपने बच्चे केयर करती है, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, बीमार हो, दस्त लगे हो, तो भी केयर करती है ना, तो ऐसा ऐसी केयर करना। इसलिए मां याद रहती है, बाप याद नहीं रहता है। मां हमेशा याद रहती है बच्चे को, 70 साल का होने के बाद भी याद रहती है। बाप कोई करता है, कोई बाप बीमार होता है, 70 साल का बूढ़ा बीमार होता है, तकलीफ हो जाती है, तो क्या बोलता है, हाय मां बोलता है कि हाय बाप बोलता है? क्यों? क्योंकि मां ने वो काम किया, वो ऐसा प्यार दिया जो कि कोई नहीं दे सका, राइट। तो इसे कहते हैं, ये रूहान, ये नरिश करता है। और अतिंद्रिय सुख माना इच्छाओं से परे संतुष्ट, मैं आत्मा हूं जो मर नहीं सकती, बाबा मेरा है, सब संबंध से मेरा है, और ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा। तो ये जो फीलिंग है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हूं मैं, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, कोई इच्छा नहीं, तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति, मतलब आत्मा परमात्मा के प्यार में खो सकती, वो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति, कोई इच्छा नहीं, इच्छाओं से परे। और आनंद माना, आनंद माना बंधन, आत्मा देह और देह के दुनिया के बंधन से परे चले जाए, बाप के प्यार की प्यार में खो जाए, लवलीन हो जाए, तो ये है आनंद। और जैसा ऐसा आनंद आ गया, तो फिर प्रकृति शक्ति आ गई, जो सुबह आज अमृत वेले अनुभव किया ना, अतिंद्र सुख की अनुभूति थोड़ी देर हुई, 15 सेकेंड ही हुई मान लो, या 1 मिनट ही हुई, आधा मिनट आनंद की अनुभूति हुई, और वो जो आधा मिनट आनंद की अनुभूति हुई ना, और 1 मिनट मुझे उसकी अनुभूति हुई अतिंद्र सुख की, देह का भान बिल्कुल भूल गया, देह का भान खत्म हो गया। अब मुझे क्या क्या हुआ, कल प्रकृति शक्ति आ गई कि कल मुझे इतने भी उठना है, 3:30 उठना ही है मुझे, तो क्योंकि मुझे अनुभव चाहिए, आनंद चाहिए। जैसे एडिक्शन वाले होते हैं, ड्रग एडिक्शन वाले शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मॉर्फिन खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि उससे वो उनको फीलिंग आती है एक्सटेसी की, हल्केपन की अनुभूति आती है, थोड़ी देर देखे भान को भूल जाते हैं, तो उसको बार बार खाएंगे, चोरी करके भी खाएंगे, कपड़े कुछ भी चीजें बेचेंगे, घर की बेच देंगे। तो ये प्रकृति शक्ति आगे कि राइट क्या रहा, रॉन्ग राइट क्या है, सुबह जल्दी उठ के उस अनुभव को देखना। जैसे बाबा ने कहा अमृत वेले उठ के ही हम अगर योग करेंगे तो ही धारणा होगी ना, विक्रम विनाश होंगे, तो वो अनुभूति हल्केपन की अनुभूति आई ना, तो वो जो अनुभूति है उसके लिए मैं परख लिया कि राइट ये है, निर्णय कर लिया मुझे करना ही है। इसके लिए मैंने बड़े पहाड़ जैसी बात को छोटा बना दिया, राई बना दिया, पहाड़ को राई बना लिया, इसके लिए मैंने सब कुछ समेट दिया, बाबा की बुद्धि टिका दी, अब बाबा जैसे कहेगा, मुरली जैसे कहेगी वैसे करूंगा, दुनिया वाले जो मर्जी करते रहे मुझे कुछ नहीं करना, घर में बीवी नाराज हो, पति नाराज हो जाए, कोई बच्चे नाराज हो, मुझे तो करना ही है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो सहन कर विस्तार को सर में संभाल लिया, जैसे समेट लिया, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, वो सहन कर सकता है जो छोटी बात को बड़ा बनाता है, राई को पढ़ाई का पहाड़ बनाता है, और बुद्धि समेट के नहीं देखता है, मन बुद्धि समेट के, वो सहन नहीं कर सकता है। जो ऐसा कर सकता है वो समा सकता है, समाने की शक्ति। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा व्यक्ति सामना कर सकता है, क्योंकि समा भी लिया, सहन भी कर ले, समा भी लिया। हमारी माताएं सहन तो कर लेते, समा नहीं पाती हैं, तो सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पेट में गैस बनती रहती है, भारीपन, हड्डियों में दर्द होता है, तो सहन के समाना भी जरूरी है, उसके लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, योग तपस्या चाहिए। तो ये समाने के बाद फिर सामना कर, फिर प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, समा लिया, अब सामना कर सकते हैं, और फिर ऐसा व्यक्ति सबका सहयोग कर सकता है, राइट। तो ये 7 एनर्जी आत्मा की, जितना आप एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते जाते हो, हमारा दिल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, अंतरात्मा, वो क्या होती है, सच्ची और साफ होती जाती है। ठीक है, उससे हमारा विवेक विजडम मतलब प्रकृति शक्ति बढ़ती जाती है, ईश्वर जैसी प्रकृति शक्ति। और ऐसे दिल में कौन आ जाता है? शिव बाबा आ जाता है। कौन आ जाता है? दिलाराम आ जाता है। सच्चे दिल साहब दिल कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजा। तो उसमें जिस दिल में एबीसीडी समाया हुआ, ज्ञान समाया हुआ है, वो दिल पवित्र हो जाती है, वो दिल शांत हो जाती है, वो दिल सबके लिए प्रेम से भर जाते हैं, वो दिल अत्यंत सुख की अनुभूति में रहता है, वो दिल आनंद में रहता है, वो दिल शव शक्तियों से भरपूर रहती है। तो प्रविजम हो गई ईश्वर जैसी, और विवेक हो गया कैसा? विवेक हो गया ईश्वर जैसा, और बुद्धि कैसे हो, जजमेंट पावर कैसे हो गई? वो दिव्य हो गई, दिव्य बुद्धि। और ऐसे व्यक्ति का जो चित्त है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो शांत एकाग्र आनंदमय हो जाता है। ठीक है, तो जो दिल में सत्य है तो चित्त में भी सत्य आ जाता है। दिल में अगर मेरे शांति प्रेम सुख आनंद है तो चित्त में भी क्या हो जाएगा? शांति प्रेम सुख आनंद। इसलिए कहते हैं देवता क्या होते हैं? सत्चित आनंद स्वरूप होते हैं। उनके दिल में सत्य होता है इसलिए चित्त कैसा रहता है उनका? आनंद स्वरूप रहता है। परमात्मा शिव बाबा क्या है? सदा ही सच्चित आनंद स्वरूप है। उसके दिल में सदा ही सत्य है और उसका चित्त सदा ही आनंद स्वरूप है। और हम लोग आधा कल्प क्या रहते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप, और आधा कल्प सच्चित आनंद स्वरूप रहते। हमारे दिल में झूठ आ जाता है, हमारे दिल में क्या आता है? देह आ जाती है, देह के संबंध आ जाते हैं, देह के स्वभाव संस्कार आ जाते हैं, देह के पदार्थ आ जाते हैं, फिर हमारा विवेक कंफ्यूज हो जाता है। अब वो पत्नी कह रही कि बेटे, मैं बेटे को बेटा है उसको डांट लगाओ, गलत काम कर रहा है डांट लगाता हूं, पत्नी खबरदार जो इसको डांटा तो, अब मैं क्या करूं, उसको डांट लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगाऊं कि नहीं लगाऊं? पत्नी कह रही लाल खबरदार जो लगाया तो घर से बाहर कर दूंगी, है ना, तो क्या करूं? अब मेरा विवेक काम करेगा क्या? विवेक काम, मेरी दिल में कितने लोग बैठे हैं दिल में? देखो तो देखो, माँ बैठी, बाप, पहले तो मैं ही बैठा हूं, मेरी देह बैठी है, फिर माँ बैठी है, बाप बैठा है, पत्नी बैठी, बच्चे बैठे, धंधा बैठा, हॉस्पिटल बैठा, क्या क्या बैठा है दिल में, पैसे बैठे हैं, बैंक बैलेंस बैठा है, कितनी चीजें, कार बैठी है, और क्या क्या चीज बैठी पता नहीं। और फिर विवेक कंफ्यूज, बुद्धि भ्रष्ट और चित्त अशांत चंचल, क्योंकि जो फाइलें कहां जा रही है, सबके सब फाइलें चित्त में जा रही है। कंप्यूटर में एक बिन होती है ना, बिन, डस्टबिन जैसे कहते हैं ना, स्पैम कहते हैं, जो फाइल सेव नहीं करते वहां जाती है। तो हमारा इसलिए सबकॉन्शियस माइंड हैवी होता जाता है, जैसे हम सोने जाते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हैवी, वो सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है, सब सपने आने शुरू हो जाते हैं। मैंने दिन में, मेरा बॉस है मेरी बात सुनता नहीं है और मुझे उल्टा सीधा बोलता है, दिल करता है उसकी पिटाई करूं, है ना, अभी वो उसकी मैं पिटाई सामने तो कर नहीं सकता हूं, सपने में पिटाई करता हूं, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में पिटाई करता हूं ना, जब रात को सपना आता है उसको पिटाई कर रहा होता हूं। इसलिए कहते सपने बहुत जरूरी हैं, जो काम दिन में नहीं कर पाए रात में तो कर लेते हैं, ठीक है, सपने सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो ऐसे जब अपने दिल में ये दिल में इसमें इसलिए दिल को, फिर इसके बाद हमारा मन है, स्मृतियां हैं जिसे हम संस्कार भी कहते हैं, तो स्मृतियां हमारे रिकॉर्ड है, एक हार्ड कॉपी यहां पर है, सॉफ्ट कॉपी आत्मा में, और वो फ्रीक्वेंसी पे खुलती है। जब मेरा दिल, जब मेरा विवेक, जब मेरा चित्त शांत है, एकाग्र आनंदमय है, तो मेरी फाइलें कौन सी खुलेंगी? वो शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियों वाली फाइल खुल जाएंगी। मतलब जब मेरा संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप था लास्ट कल्प में, फरिश्ता स्वरूप था जब मेरा लास्ट का, देवता स्वरूप था, वो फाइलें खुल जाती, ठीक है, वो फाइलें खुली तो मेरी वृत्ति, फिर मेरी वैसी वृत्ति, आत्मिक वृत्ति सबके प्रति आ जाती, भावना कैसी आ जाती है सबके प्रति? शुभ भावना, शुभकामना आ जाती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो मेरा वृत्ति वायुमंडल मेरा बहुत अच्छा हो जाता है आसपास का, और भावना से वाइब्रेशन जाते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक जाते हैं, और संकल्प मेरे कैसे होते हैं? पावन, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी हो जाते हैं। तो ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, इसकी शर्त क्या है? दिल में एबीसीडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और दिल बाबा की एक शर्त है, बाबा कहते बच्चे मेरे कमरा खाली चाहिए, ये नहीं हो सकता कि आप इसमें पत्नी को, बेटे को भी रख लो और साथ में बाबा भी रह जाए, बाबा को बोलो ना बाबा एडजस्ट कर लो ना, बेटा तो बैठा है यहां पे, आप भी आ जाओ ना, कह पहले इसको निकालो, बाबा को कहे बाबा ये सेंटर मेरी बुद्धि में बैठा है, सेंटर कहते इसको निकालो बाहर तब मैं आता हूं, मेरी देह बैठी, हार्ट की बीमारी बैठी है दिल में, तो हार्ट की कहते बाबा कहते बच्चे इसको निकालो तब मैं आता हूं, ठीक है। तो ये जो चीज है सर, सत्य दिल में रखोगे ना, सत्य दिल में, कॉन्शियसनेस में, तो बाबा उस दिल में आता है। वो जिस दिल में बाबा है, बाबा ने क्या कहा था, दिल में, बाबा ने कहा बच्चों के दिल में कौन, बाबा, और बच्चों के और बाप के दिल में कौन, बच्चे। तो अभी किसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में सिर्फ ये ज्ञान बैठा हुआ है, जिसके दिल में, जिसकी बुद्धि में सिर्फ ये ज्ञान, इसका मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहता है, ऐसे दिल में बाबा आता है। ठीक है, तो ये दिल में बाबा, उसका विवेक ईश्वर जैसा हो जाता है, उसकी बुद्धि दिव्य हो जाती है, उसका चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाता है। और ऐसी स्मृतियां, उसको स्मृति कौन सी जागृत होती है, इस दुनिया में रहते हुए। आज बाबा ने कहा ना, जैसे ही आप बाप की श्रीमत पे नहीं चलते तो क्या होता है, माया वार करती है, ये पांच विकार वार करते हैं, याद है, जैसे ही बाबा की श्रीमत पे नहीं चलेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया आ जाएगी। तो ये जब, अगर बाबा की श्रीमत क्या है, बच्चे सारा दिन मुझे, मेरे को याद करो, चलते फिरते उठते, मतलब बाबा को अपने दिल में समा के रखो, चलते फिरते उठते, तो बाबा के साथ एक एक संबंध का अनुभव करो, डी फॉर ड्रामा, और ड्रामा से साक्षी रहो। अगर एबीसी है तो डी है, अगर एबीसी नहीं है तो डी है क्या, आत्मा बाबा एक एक संबंध की अनुभूति है तो डी है, डी माना ड्रामा को साक्षी होकर देख सकते हो। जैसे बाबा ने कहा ज्ञान रोशनी है, किंतु ज्ञान से, खाली ज्ञान से हमारे विक्रम विनाश नहीं होते, योग से विक्रम विनाश होते हैं। मैंने मुरली सुनी, मुरली पढ़ी, 10 बार पढ़ ली, इसके तो मैंने योग नहीं किया, मैंने उसका अनुभव नहीं किया, तो मुझे विक्रम विनाश नहीं होंगे, राइट। तो जितना हम करते जाते हैं, इसका अभ्यास करते जाते, उतना मेरा फिर स्मृतियां, मेरी वो फाइलें अच्छी फाइलें खुलती जाती, और वृत्ति चेंज, भावना चेंज, और संकल्प चेंज, राइट। और फिर मेरा ये सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर है, बाहर सूक्ष्म शरीर है। देखिए, जैसे एक ब्रेड अगर हम ले लें, एक सूखी ब्रेड ले लें, एक प्लेट में दूध डाल दें और ब्रेड उसके ऊपर रख दें, दूध के अंदर, तो क्या दूध कहां जाएगा, ब्रेड के अंदर चला गया। अभी ब्रेड की शेप और दूध की शेप क्या है, अभी पहले दूध ऐसे फैला हुआ था, अभी दूध, अब सारा दूध चला गया ब्रेड के अंदर, अभी दूध की शेप क्या हो गई, कैसी हो गई, जैसे ब्रेड है। अब दूध कहां कहां पहुंच गया, उसके दस रोम रोम में पहुंच गया ना, ब्रेड के रोम रोम में पहुंच गया। ऐसे ही इस सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, ये पूरा हमारे सारे शरीर में फैला हुआ है, इसी जैसा सूक्ष्म शरीर में आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुख भी है, जीभ भी है, हार्ट भी है, फेफड़े भी है, सब कुछ है, लीवर भी है, आंते भी, सब कुछ है। ऐसा कैसा है, हर जगह वो पहुंचा हुआ है, मन में हमारे हर चीज है। छोटी सी बात है, कहीं होता है हमारे मन में उसके विचार चलते नहीं चलते, एक पैर में फुंसी हो जाए नीचे, तो क्या क्या उसके विचार, दिन उसके विचार चलते हैं, जो फुंसी है 10 लोगों को बताते हैं, नहीं, छोटी सी बात पे कितना मन में रहती है ना, तो छोटी सी बात नहीं होती तो हमें कितनी मन में रहती है। तो सूक्ष्म शरीर में ऐसे हमारा पूरा सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, पॉजिटिविटी, ठीक है, राइट। कब पॉजिटिविटी बनेगी, साधन क्या है, दिल में कौन चाहिए, एबीसीडी, ये ज्ञान, जितना ये ज्ञान होगा उतना बड़ा सूक्ष्म शरीर बनता जाएगा, लाइट की बॉडी बनती जाएगी, ठीक है। और दूध मान ली, थोड़ा अगर दूध थोड़ा सा हो, बिल्कुल 2 ml दूध हो, और ब्रेड बड़ी हो, सूखी हो वो बिल्कुल, तो दूध कहां जाएगा, सारी ब्रेड में जाएगा क्या, थोड़ी सी ब्रेड गिरी होगी बीच बीच में से, बाकी सूखी रहेगी ना, नहीं रहेगी। और दूध ज्यादा सारा हो तो फिर क्या होगा, और ब्रेड एक हो तो उसमें डाल दिया तो क्या दूध उसके आसपास एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और आसपास फिरेगा। ऐसे ही हमारा ऑरा है, हवा मंडल है। अगर मेरा 15 पे मेरा ऑरा, मेरी 15 विचार 1 मिनट में चल रहे हैं, मेरा 15 फ्रीक्वेंसी है, इसे बीटा रिदम कहते हैं, तो मेरा ऑरा स्किन के लेवल पे है, ठीक है। मैंने चिंता की, डरा, डर लगा, चिड़चिड़ापन लेके आया, तो मेरा ऑरा क्या होगा, मेरा फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगी, 25-30 हो जाएगी, ऑरा अंदर चला जाएगा। मतलब अब जो हवा मंडल सूक्ष्म से छोटा हो गया माना, अब मुझे थोड़ी सी बात भी फील होती है, थोड़ी टेलीफोन की घंटी की बजेगी तो मुझे लगेगा अरे क्या हो गया, कुछ गलत खबर तो नहीं आ गई, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, हर बात में डर लगेगा, किसी ने थोड़ा सा आंख ऐसे बेचारे ने आंख ऐसी की, या किसी ने नाक थोड़ी सी ऐसी कर दी, मेरे को ऐसे क्यों कर रहा है। छोटी बात का प्रभाव पड़ता है, छोटी बात का प्रभाव, ऊपर सर्दी गर्मी का, थोड़ा मौसम बदल गया, थोड़ा सा कुछ किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा ऊपर, बहुत सेंसिटिव बन जाता है आदमी, इमोशनल बन जाता है, थोड़ी थोड़ी बातें फील होने लगती है, ठीक है। जल्दी चिंता गुस्सा वाले, चिड़चिड़ेपन वाले को, फिर गुस्सा किया तो 35 हो गई, और ज्यादा गुस्सा किया तो 40 हो गए, तो फिर सूक्ष्म से सिकुड़ता जाता है। ये जो विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें क्या होता है, हम बहुत सेंसिटिव बन जाते हैं, थोड़ा सा भी को टच भी करें तो क्या होता है, एकदम ऐसा फील होता है, बहुत ज्यादा फील होता है। तो विकार हमारे सूक्ष्म शरीर को छोटा कर देते हैं, ठीक है। और हमें बाहर की चीजों का तुरंत असर, गर्मी का, सर्दी का, कई लोगों को बहुत गर्मी लगती है, बहुत सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा, सर्दी में सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर छोटा हो गया। थायराइड की बीमारी भी हो सकती है, किंतु वो हर बात में फील करते हैं, हर बात में फील, थोड़ा सा कुछ हो गया फील करना शुरू कर देंगे। और इसकी बजाय आप एबीसीडी को अभ्यास करते जाओ, रिवाइज रियलाइज करते जाओ, मुरली के महावाक्यों को मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाओ, तो आपके 15 के बजाय 8 संकल्प हो जाएंगे, 6 इंच का औरा बन जाए, 6 इंच दूर तक आपका शांति प्यार खुशी का औरा फैल जाए। सूक्ष्म शरीर बड़ा हो गया नहीं हो गया? हमारे जब इस दिलवाला प्रोग्राम में लोग आते हैं ना, हम पहले दिन उनकी हाइट वेट नापते हैं, सातवें दिन फिर हाइट वेट नापते हैं, तो हाइट वे हाइट घटती होगी बढ़ती होगी? हाइट घट जाती है लोगों की, दिल वालों की घट जाती है बढ़ जाती है? किसी की 3 इंच बढ़ जाती है, किसी की 4 इंच, किसी की 6 इंच, किसी की 1 फुट बढ़ जाती है, पता है आपको? हाइट 1 फुट बढ़ गई, 1 फुट में ना 1 फुट और ऐड हो गया ना, अभी इतना बड़ा हो गया ना, अभी पहले 6 फुट का था, अभी 7 फुट का हो गया ना, 7 फुट उसकी हाइट होगी ना। दादी जन की कितनी है? 4.5 फुट की है लगभग, 4 फुट 8 इंच की है। उनका औरा कितना बड़ा है? 7 फुट का आदमी भी आके झुक जाता है, क्यों? क्योंकि उनका औरा कई फुट का है ना, 10 फुट का, 4.5 फुट, 4 फुट 8 इंच वो, और 10 फुट और जोड़ दो, कितना हो गया? 15 फुट की हो गई ना दादी। तो उससे कितना भी बड़ा आदमी सामने आके झुक जाएगा ना, नहीं समझ रहे? अपनी हाइट बढ़ाने का तरीका, कई लोगों को बहुत शौक होता है हाइट बढ़ाने का ना, है ना, बढ़ानी हाइट बढ़ानी बढ़ानी, ऐसे हाइट बढ़ा सकते इस बॉडी की हाइट की, मैं समझो औरा बढ़ा, है ना, ठीक है। तो अगर 8 हमारा शांति, शांति आ गई तो मतलब 6 इंच और 6 इंच हाइट बढ़ गई आपकी, ठीक है। और आपने अगर 8 की बजाय 7 कर लिया तो क्या हो जाएगा? 4 फुट, 8 की बजाय 6 करो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो 4 फुट, 4 फुट और 4 फुट मतलब आपकी हाइट बढ़ गई। अभी आप 5 फुट के हैं, 9 फुट के हो जाओगे, ठीक है, मतलब 4 फुट आपकी हाइट, मतलब और बढ़ गया ऐसे। क्या आभामंडल क्या है? आभामंडल कुछ और नहीं, शांति प्यार खुशी की एनर्जी, सातों एनर्जी बॉडी से निकल निकल के आपके आसपास इकट्ठी बन जाती है। और ये कवच है, शील्ड है, आसपास के वातावरण से, दूसरे लोगों को गलत वातावरण, संघ से, सारा संघ कैसा है। और ये और आपके साथ जाता है, अपने घर में भी जाएगा, जहां बैठोगे जहां जाओगे और आपके साथ जाएगा, वहां शांति प्यार खुशी की एनर्जी जाएगी। कोई व्यक्ति गुस्सा करता हुआ आ रहा है आपको, गुस्सा करता है, वो 4 फुट तक तो गुस्सा करता आएगा, आपके औरा में आते क्या हो, शांत हो जाएगा, गुस्सा आएगा नहीं उसको, और उसके गुस्से का असर आपको नहीं होगा, आपको रहम आएगा, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर समझ में आई आपको आगे? तो सूक्ष्म शरीर कैसे बड़ा होता है, आप ब्रह्मा बाबा को ऊपर देखते हो, ब्रह्मा बाबा कितना बड़ा दिखाई देता है ऊपर, कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसे बच्चे गोद में जाके समा जाओ, ऐसे छोटे से बच्चे की तरह से ना, भले आप 6 फुट के हो, है ना, पर उसका आपका कैसे लगता है, जैसे बाबा की गोद में जाके समा गए, बाबा छोटे बच्चे की तरह आपको प्यार कर रहा, बच्चे कैसे हो, बच्चे कैसे हो, क्या इतना बड़ा ब्रह्मा बाबा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि औरा उसका, आभामंडल बहुत बड़ा, समझ में आया कितना बड़ा बाबा क्यों हो जाता है? बाबा को मुरली में कहते बाबा कितना बड़ा बाबा है ना, कितना बड़ा बाबा है, हाँ जी, हाँ, सबको कैसे संभाल लेता है सबको बाजू में, तो कैसे हुआ बड़ा? ऐसे बड़ा हुआ, कल्पना नहीं, उसका आभा मंडल बड़ा हुआ, तो उसमें उसको समा जाता है, ठीक है। तो 6 फुट पे 6 की अगर फ्रीक्वेंसी, 6 माना प्यार, रूहानी प्यार, तो 4 फुट हो गया, और 5 हो गया तो कितना हो गया, 4 16 फुट, 16 फुट तक हो गया, आपका पूरा डाइनिंग रूम भर गया शांत, उसमें जो आके बैठेगा उसको शांति की अनुभूति होगी। और 5 4 हो गया तो 4 बना खुशी, कितना हो गया, कोई इच्छा नहीं रही अभी, 64 फुट तक हो गया। 3 हो गया तो कितना हो गया, 256 हो गया। 2 हो गया तो कितना, 1000 फुट से भी ऊपर हो गया, ठीक है, करना है 1000 फुट तक, क्या करना पड़ेगा, ये मुरली को घूटना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना कुंडी सोटे में डाल के घूट के पी जाओ, ऐसा नहीं करना। बड़ी दादी मुझे बोला करते, बड़ी दादी कई बार मुझे, बड़ी दादी ने एक बार पूछा, गुप्ता जी जानते हो अष्टतन कौन बनते हैं? दादी मुझे तो नहीं पता कौन बनते हैं। मैं, दादी आप है ना अष्टतन? दादी कहती है देखो गुप्ता जी, ये बाबा ने भी कहा हुआ है जिनको बाबा और बाबा की मुरली श्वासो श्वास याद रहता है वो अष्टतन बनते। एक दिन में कितने श्वास लेते हैं? 14 एक मिनट में दिन में लेते हैं और रात को 10 से देते हैं एवरेज। आप काउंट करेंगे 16,000 सांस लेते हैं एक दिन में। जो 16,000 इनको 16,000 बार बाबा याद आए और बाबा की मुरली याद आए वो बनते हैं अष्टतन। दादियों को देखोगे दादियां क्या करती हैं? जब देखो बाबा ने आज कहा, बाबा ने आज कहा, बाबा की याद और बाबा की मुरली, बाबा की याद और बाबा की, और कुछ होता ही नहीं उनके मन में। आप कैसे भी किसी की कुछ बात बोलो बाबा, वो कुछ और नहीं बोलेंगी, बस मुरली बोलती रहेंगी, बाबा के साथ का अनुभव बताती रहेंगी, बाबा ने मुझे ऐसे किया, बाबा ने मुझे ऐसे किया, बाबा ने मुझे ऐसे किया, नहीं ऐसा। और फिर शोक सो में कौन आते हैं? 108 की माला होंगे ना, तो आज तो निकल गए। शोक सो में कौन आते हैं? 108 की माला में कौन आते हैं? जो दिन में मुरली कम से कम कितनी बार रिवाइज करते हैं? 100 बार रिवाइज करते हैं, जिनको बाबा की याद और मुरली कम से कम 100 बार याद आती है। जिनको 100 बार याद आती है हाथ उठो, 100 बार। मैं दिन में हम 16 घंटा काम करते हैं, 16 घंटा जागते हैं लगभग, तो 16 को 6 से गुना करो तो कितनी बार हो गए? 96 हो गए ना, 100 बार हो गए, तो एक घंटे में 6 बार कितनी बार? तो 108 की माला में आना मुश्किल नहीं है। मुरली नोट करके 8 पॉइंट नोट कर लो, मुरली में से 8-10 पॉइंट नोट कर लो और हर 10 मिनट में निकाल के देख लो, फिर उसे मनन चिंतन मंथन करते रहो। दिल यार्डे हथ काम, क्या बोलते हैं, हथ कार्डे है ना, दिल उसमें लगा रहा है मेरे बाबा ने मुझे क्या कहा, मेरे बाबा, मेरा साजन मुझे क्या कहता है। मैं हमेशा क्या करता हूं, ये बाबा की मुरली क्या है? बाबा का लव लेटर है। ये मुरली क्या है? बाबा का लव लेटर। लव लेटर कहां रखते हैं? दिल के पास। और कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? दिखा के पढ़ते हैं लोगों को, आसपास देखते कोई है तो नहीं, कोई नहीं होता तो ऐसे निकालते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर छुपा देते हैं, फिर जब तक मौका मिले तब तक उसे वही सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं हाथों से और वही सोचते हैं, मेरे को मेरे साजन ने ऐसा बोला, मेरे साजन ने मेरे को ऐसे बोला। तुम सितारे हो, तुम चांद हो मेरे, तुम मेरे नैनों के नूर हो, है ना। वो मेरे को ऐसा समझता है, मैं तो बेवकूफ हूं, वो नैनों को नूर समझता है ना। तो ऐसा सोचते रहो, है ना, बाबा मुझे भी ऐसा बनना है, जैसे आप चाहते हो मैं ऐसा बन के दिखाऊं, है ना। मनन चिंतन मंथन से मैंने करते रहो, फिर जैसा मौका लगा फिर निकाल लिया, लगन लगी रहती है ना। दर्शन आपने लव लेटर कभी पढ़ा नहीं होगा, पर इसलिए शायद अनुभव नहीं है। तो जो लव लेटर पढ़ते हैं ना उनको बहुत लगन रहती है ना, वो बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, पूरा तो एक बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, थोड़े थोड़े एक लाइन पढ़े, ऐसे मुरली भी सारे एक साथ पढ़ने का मौका नहीं मिलता है ना। ऐसे जो एक एक पॉइंट बाबा को याद नहीं, जब तक आखिरी लाइन ना पढ़ ले तब तक शांति नहीं होती है ना। ऐसा प्यार होना चाहिए, क्या ख्याल है, कह सकते हैं ऐसा प्यार? तो सूक्ष्म, हमारा सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा हो जाएगा सोचो जरा, तो सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा हमारा हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा हो गया तो ये शरीर भी हमारा 7 दिन लगता है। इसकी बीमारी क्यों हुई? क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं जा रही थी, शांति प्यार खुशी की एनर्जी नहीं जा रही, अभी जानी शुरू हो गई। तो पुरानी गाड़ी भी क्या करती है, एक अच्छा ड्राइवर क्या करता है, खटारा गाड़ी को भी चला लेता है नहीं। हमारी दादियां कैसी हो गई, बड़ी बड़ी उम्र की, अब गाड़ी कैसी उनकी पुरानी हो गई, 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की गाड़ियां हो गई हैं। मॉडल कौन से वाले हैं उनके, कौन से मॉडल है? 2016 के मॉडल है किसी का, 2015 किसी का, 2010 का, 1910 का मॉडल है, 1900 किसी का, 1905 का मॉडल है, ऐसे मॉडल है, 1925 का मॉडल किसी का है ना। अब खटारा गाड़ी तो हो चुकी है, अब चलाने वाला ड्राइवर जो अच्छा ड्राइवर क्या करता है, खटारा गाड़ी को भी चला लेता है। और अनारी ड्राइवर क्या करता है, अनारी ड्राइवर क्या करता है, अच्छी नई गाड़ी को भी एक दिन में खटारा बना के ले आता है। तो हमें क्या करना है, गाड़ियां तो हमारी यही है, खटारा ही है, हमें पता है हमारी गाड़ियां खटारा है, तो अब अच्छा ड्राइवर बन के इस गाड़ी को चलाना है, ठीक है, चलाएंगे, तंग नहीं करेगी गाड़ी फिर ना, ठीक। देखा ना दादियों को कैसे देखा ना, सब काम करती है, सब काम देखती है ना। अब मैं लास्ट में सूक्ष्म वतन पे आ जाता हूं, ठीक है, टाइम तो मेरा हो गया वैसे पूरा, बंद करें। सूक्ष्म वतन पे थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा नहीं बताता हूं। सूक्ष्म वतन क्या है, ये सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या, शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए, ब्रह्मा बाबा पहले से अभ्यास कर रहे थे, पीरू वजीर और था ना बाबा, मन को और मुख्य उसको बुद्धि को बात करते थे ना। 1932 की मैंने डायरीज देखी है ना, पहले हमारी लच्छू दादी होती उनके पास होती थी डायरीज, तो हम पढ़ते थे दादी बाबा कैसे बात करते मन बुद्धि से। तो बाबा का अभ्यास बहुत पहले से शुरू हो गया था मन बुद्धि का, तो बाबा जो है उसमें कैसे मन बुद्धि कंट्रोल कर रहे थे। जब पहली बार शिव बाबा ने जब उनको साक्षात्कार कराया तो पहले क्या बोला, निज स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, और फिर मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव, और तत्वम तुम भी ये। तो बाबा ने उसकी बुद्धि में ज्ञान डाल दिया, दिल में ज्ञान डाल दिया, एबीसीडी डाल दिया, ठीक है। तो बाबा ने उसकी उनकी बुद्धि, तो बुद्धि क्या हो गई, पहले दिन से दिव्य हो गई बाबा की, ठीक है, और मन में लक्ष्य दे दिया। फिर मैं स्वर्ग का साक्षात, पहले विनाश का साक्षात्कार कराया, फिर स्वर्ग का साक्षात्कार कराया, ये दुनिया विनाश होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है, और तुमको बनानी है ऐसी दुनिया, तो लक्ष्य दे दिया, मेमोरीज उसकी इमर्ज कर दी, एटीट्यूड बना दिया, वृत्ति बना दी, भावना बना दी कि तुमको करना, संकल्प दे दिए ये काम तुम, और मैं करवाऊंगा तुम्हारे द्वारा। बाबा ने कहा मैं कैसे करूंगा, मैं तो नहीं कर सकता, इतना बड़ा दुनिया है, कैसे मैं बनाऊंगा। बाबा ने कहा मैं करवाऊंगा, तुम्हें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है, तुम्हारे द्वारा मैं कराऊंगा। तो बाबा की पहले दिन से बुद्धि और मन क्या हो गया, पावन सतो प्रधान हो, ठीक है। क्या बचा, संस्कार रह गए, परिसर जन्मों के संस्कार रह गए, वो बाबा ने पुरुषार्थ करके क्या किया, संस्कार 33 साल में संस्कार भी परिवर्तन कर, वही पावन सतो प्रधान बना, ठीक है। तो याद है 68 में जब बाबा ने संदेशी को भेजा था ऊपर, तो बाबा ने कहा ऊपर वाले बाबा को देख के आओ, ऊपर एक बाबा बैठे ना, तो बाबा ने कहा, उसने कहा के कहा कि बाबा ऊपर वाले बाबा तो बहुत चमकदार है और नीचे तो आप तो इतने चमकदार नहीं हो। उस बच्ची थी, उसको समझ नहीं थी कैसे बाबा के सामने बोलने, तो बाबा ने और पुरुषार्थ करना शुरू किया, गीत बजवाने मुरली में बंद कर दिए, पहले मुरली में गीत बजते थे ना, गीत बजवाने बंद कर दिए, और ज्यादा साइलेंस में रहने लगे बाबा, बस सारा दिन योग, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास बहुत गहरा, चुप रहते थे ज्यादातर बाबा। और फिर बाबा ने जनवरी मास का शुरू था 1969 का, शुरू की बात है जनवरी मास के शुरू, बाबा ने फिर उसको बच्ची को भेजा, जाओ बच्ची देख के आओ बाबा कैसे। तो उसने आके कहा बाबा ऊपर वाला बाबा जितना चमकदार, नीचे वाला बाबा भी उतना चमकदार है, सुना। तो बाबा ने मतलब क्या पुरुषार्थ करके ये किया, तो बाबा ने पहले दिन से अपनी बुद्धि, इसलिए बाबा को सबने फरिश्ते के रूप में देखा, एंजल के रूप में देखा, लाइट की बॉडी देखी इसकी, कभी किसी ने उनको किसी चीज में कोई विकार के वश नहीं देखा, किसी जल्दी चिंता गुस्सा के वश नहीं देखा, डर के वश नहीं देखा, कोई भी आए इनकम टैक्स कोई भी आए, सीबीआई वाले आए पकड़ने के लिए आए, कुछ भी करने के लिए आए, कितने भी लोगों ने मारने के लिए आए, बाबा कभी डरे, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ, वो मारने के लिए आए तो आओ बच्चे आओ, है ना, सीबीआई वाले पकड़ने के लिए आए, सीआईडी वाले आओ बच्चे आओ, है ना, बाबा कभी डरते थे क्या, क्योंकि बाबा का ऑरा, फिर आके वो जब बाबा का ऑरा देखते थे बाबा के चरणों में पड़ जाते थे। एक सरदार जी बाबा को मारने के लिए आए थे, उनकी पत्नी और बच्चा ज्ञान में छिड़ोगे तो उसको गुस्सा आया कि मेरा घर ही बिगाड़ दिया इन्होंने, तो बाबा को मारने के लिए आए, तो उनको क्या दिखाई दिया, दूर से आए ना गुरु नानक देव दिखाई दिए, अरे मैं क्या करने, फिर पैरों में आके पड़ गया, मैं अपने गुरु जी को मारने जा रहा था। तो जिसको जो था उसको ऐसा दिखाई, ऐसा तो ये था सूक्ष्म शरीर बाबा, शुद्ध बुद्धि शुद्ध मन, पवित्र बुद्धि पवित्र मन। अब क्या हुआ, अब बाबा ने क्या किया, सूक्ष्म वतन कैसे बनाया, पूरे चारों युग में सूक्ष्म वतन नहीं होता, दो ही तो वतन होते हैं, एक स्थूल वतन 5 तत्वों का और एक मूल वतन या आत्माओं का देश जिसे कहें परमधाम होता। किंतु बाबा जब आए तो बाबा ने क्या किया, बाबा के पास क्या चीज थी, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा बस सूक्ष्म, शिव बाबा तो क्या है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियों का सागर है, और सूक्ष्म वतन में देवता जो है वो सूक्ष्म वतनधारी सूक्ष्म शरीरधारी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, तो मतलब शिव बाबा के पास तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, ना सूक्ष्म है ना स्थूल है, सूक्ष्म शरीरधारी दूसरे हैं और तुम लोग दोनों शरीरधारी हो, सूक्ष्म भी और स्थूल भी, राइट। तो बाबा के पास दिल ही है, सिर्फ बाबा के पास क्या है, सिर्फ दिल है, और दिल में क्या भरा हुआ बाबा के, बाबा तो सागर है ना, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम सुखानंद शक्तियों का सागर है। तो बाबा का दिल कितना बड़ा होगा, हमारा तो इतना सा है, इतना सा भी कितना सही होगा है ना, उसका कितना बड़ा दिल है, वो सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का। कितना बड़ा सागर, कितना बड़ा होता है, कितने बाल्टी पानी होता है उसमें, 10 बाल्टी 20 बाल्टी अथा होता है ना। तो कितना बड़ा हो गया, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्तियों का सागर। तो बाबा क्या कहता है, मेरे दिल पे आप सो भी सकते हो, सैर भी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो, जो चाहो उस पर कर सकते हो, हर एक को छुट्टी है, सिर्फ क्या क्या है उसकी प्रिकॉशन क्या है, श्रीमत पे चलना, आज्ञाकारी जो होगा ना वो बाबा के दिल पे सो सकता है, जाग सब कुछ कर सकता है, ऑफिस में बैठ के भी काम कर, खाना भी बना सकते हो, उस पर गैस रख लो, उस पर गैस खाना बना लो, हर काम उस पर कर सकते हो, वॉशिंग मशीन ले जाओ ऊपर ही धो लो कपड़े उसी पे धो लो। तो बाबा का दिल पर सब कुछ, मतलब सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, सूक्ष्म वतन शिव बाबा का दिल तख्त है, ठीक है। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, मैं मुरली की डेट मुझे याद नहीं है इसमें, तो बाबा का दिल तख्त ही सूक्ष्म वतन है। बाबा शिव बाबा तो वहां पे बिंदु के रूप में बैठा है परमधाम में, उसने अपना दिल निकाल के रखा हुआ, कि तो वो एक्सटेंशन उसने कर दिया तो सूक्ष्म वतन बन गया, ठीक है, दिल का। तो सूक्ष्म, अब सूक्ष्म वतन में क्या है, अब सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा क्या है, ब्रह्मा बाबा कुछ और नहीं है, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण पावन सत्वप्रधान बुद्धि है, संपूर्ण पावन सत्वप्रधान मन है, और संपूर्ण पावन सत्वप्रधान संस्कार है, ठीक है। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के दिल में बैठा है, ठीक है, सूक्ष्म वतन में ना, कहां बैठा है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कहां बैठा है, शिव बाबा के दिल में बैठा है, और ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन बैठा है, ब्रह्मा बाबा के दिल सच्ची साफ है, इसलिए उसमें कौन बैठा है, शिव बाबा बैठा है, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों का सागर वहां बैठा। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, इस समय तक कौन है, एक ही है ऐसा बाबा का बच्चा, ब्रह्मा बाबा, जिसके दिल में सदा शिव बाबा है, और वो सदा बाबा के दिल में है, शिव बाबा के दिल, ठीक है। तो समझ में, सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, बाबा का दिल तख्त है, राइट, मतलब ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख। देखो जब मैं अनुभव करता हूं, मैं बैठता हूं योग करने, तो मैं ऐसे अनुभव करने बैठता हूं, सूक्ष्म वतन जाना माना, बाबा का दिल तक क्या है, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्तियों का सागर, फील करते, अनुभव करते हुए, और उसमें ब्रह्मा बाबा क्या है, 100 संपूर्ण पावन सत्वप्रधान बुद्धि, संपूर्ण पावन सत्व मन और संस्कार, उसका दिल क्या है, सच्ची साफ, और उसमें कौन बैठा है, शिव बाबा कौन बैठा है, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्तियों का सागर। तो समझो कि वहां पे है क्या, सूक्ष्म वतन में क्या है, यही सातों एनर्जी भरपूर है। ऐसे सूक्ष्म वतन में कौन जा सकता है, शुद्ध संकल्प ही वाले ही शुद्ध इसमें जा सकते हैं। इसमें जाने के लिए क्या चाहिए, दो चीज, पवित्र बुद्धि चाहिए और दिव्य बुद्धि चाहिए, और क्या चाहिए, शुद्ध संकल्प चाहिए। शुद्ध संकल्प स्विच है और दिव्य बुद्धि विमान है, ये लिफ्ट है। दिव्य बुद्धि में बैठो, स्विच ऑन करो, शुद्ध संकल्प का स्विच ऑन करो, कहां पहुंच गए, बाप दादा की गोद में पहुंच गए, दोनों कंबाइन हो गए, बाप दादा हो गए ना, अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कंबाइन हो गए, तो ये बाप दादा की गोद में पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए क्या, नहीं पहुंचे, कंफ्यूज होने की बात नहीं, कोई सूक्ष्म वतन फिजिकल नहीं है। कई बार कहते हैं, वो कमेंट्री में करते ना, सूर्य चांद तारों के पार जा रहे हैं, वो फिर उसके बाद वहां पे आया, हजारों सूर्य के, हजारों चांद के माफिक रोशनी फैली हुई है, वहां पे ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं, है ना, वहां पे ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे ऐसा नहीं, ये कोई फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, ये कोई, तब शिव बाबा, तो ये बाबा को सूक्ष्म वतन को सूक्ष्म नहीं, वो ऐसा नहीं, कोई फिजिकल नहीं है, सूर्य चांद तारों के पास पार जाओ तो आप, मतलब ये शरीर किस चीज का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, जैसे ही आप इस देहभान से बाहर निकलते हो, देहभिमान से बाहर निकलते हो, 5 विकार देहभान से ऊपर गए, कहां पहुंच गए, सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, देह देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को अपने दिल में से निकाला, कहां पहुंच गए, धरती के ऊपर नहीं है, धरती के ऊपर क्या, हम बस ये अपनी देह से बाहर निकलो, सूरज चांद तारे की बात छोड़ दो, ठीक है, है ना। वो कोई फिजिकल नहीं है, वो सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता ना, ऐसे सूक्ष्म वेतन कोई ये नहीं कि सूर्य चांद तारे, मतलब कई लोग ढूंढते ही रहते हैं, अभी सूर्य चांद तारे आएंगे फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, है ना। हम यहां से जाते हैं ना, उदयपुर से बॉम्बे जाते हैं ना, उदयपुर से दिल्ली जाते हैं, बीच में जयपुर आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर उदयपुर आएगा, फिर हम दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसे थोड़ी ना, कोई सीधे दिल्ली पहुंचते हैं ना, तो ऐसे दिल्ली पहुंचना है, ठीक है, ऐसे दिल्ली मतलब बाबा के दिल पे पहुंचना, ठीक है, समझ गए। तो चलते फिरते उठते बैठते अनुभव होना चाहिए, और बाबा ने कहा हुआ मुरली में, सूक्ष्म वतन में जाने के लिए क्या चाहिए, बाप से सर्व संबंधों के अनुभव की सार वाली याद चाहिए, सर्व संबंधों के अनुभव के सार वाली याद, मतलब एक एक संबंध बाप से, जो भी संबंध चाहिए आपको, मां का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का, साजन का, सर्जन का, जो भी चाहिए आपको, सिद्ध हो रहा है बाबा को, बाबा ही याद आना चाहिए, बाप से सर्जन की अनुभूति होनी चाहिए, पेट में दर्द हो रहा, कमर में, बाबा आपको बाबा याद आना चाहिए, डॉक्टर याद नहीं आना चाहिए, गोली याद नहीं आनी चाहिए। जैसे दादी मुझे कहा करते, दादी प्रकाश में नहीं थे ना, मुझे कहते थे, गुप्ता जी मैं डॉक्टर से, मैं ना बाबा से ऐसे बात करता हूँ जैसे आपसे बात करते हैं, मैं तो बाबा की फोटो थी, बाबा से कहते मैं ऐसे बात करते, अच्छा। फिर दादी ने कहा कि गुप्ता जी मैं थक जाती हूँ तो बाबा मेरी मालिश कर देता है, तो मैंने कहा अच्छा दादी। तो फिर एक बार क्या हुआ, मुझे कैड हार्ट का प्रोग्राम था, जो दिल वालों का प्रोग्राम, तो मैं सारा दिन पेशेंट देखता रहा, ओपीडी में पेशेंट आते रहे, हॉस्पिटल में प्रोग्राम था, तो मैं देखता रहा दिन में भी, सारा दिन लेक्चर भी लेता रहा, योग कराना सब कुछ मुझे ही कराना होता था सारा टाइम, शुरू में कोई और नहीं आता था, कोई कभी एक बार शिलू बहन आ गई, सारा दिन बाकी मैं ही लगा हूं, बीच में क्लास भी करा रहा हूं, बीच में इधर भी जा रहा, स्लाइड भी बना रहा हूं, स्लाइड भी बनी नहीं थी, बनाता रहता था बीच में। तो मैं 3 बजे तक मैं कभी इस कमरे में जाऊं, कभी उस कमरे, कभी वहां से पेशेंट सीरियस हो जाए, कभी वहां से पेशेंट सीरियस हो जाए, कभी उस साथ वाला सीरियस हो जाए, कभी वार्ड में कोई सीरियस हो जाए, तो मैं सारी रात घूमता, दिन में भी घूमता रहा, रात को भी। 3 बज गए, 3 बजे अपने कमरे में आया, 3 बजे आके बैठा बेड पे, मैंने कहा 3:30 अभी गीत बज जाएगा, फिर उठना है। तो मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा था, हाथ पैर सब, सिर भी दर्द हो रहा था, कमर भी दर्द, सब कुछ दर्द था, पूरा ऐसे रूम वूम में दर्द हो रहा था, थका हुआ था बहुत बहुत। मैंने कहा बाबा, फिर मेरे को तभी याद आई दादी की बात आई, दादी कहते मैं थक जाती हूँ तो बाबा मेरी मालिश करता है। तो मैंने ऐसे ही बाबा से, जैसे ना अपने अंदर ही ऐसे, मैंने मेडिटेशन नहीं किया, मैंने ऐसे ही बोला, बाबा दादी की मालिश कर सकते हो, मेरी मालिश नहीं कर सकते। और आप मानेंगे, आप सोचेंगे, मतलब क्या हुआ, ऐसे सोचते ही क्या हुआ, वैसे मेरे को लगा इस अंदर से कुछ ना ऐसे अंदर हो रहा है, ऐसे अंदर हो रहा है, ऐसे हुआ, फिर यहां हुआ, अंदर अंदर सारे, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां, पूरा समझो आधा मिनट या पौना मिनट लगा हुआ, पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे हो गया, और मैं इतनी पावर आ गई, इतनी एनर्जी आ गई, इतनी फ्रेश हो गया, जैसे उठ के खड़ा हो गया। फिर लेटने को दिल नहीं किया मेरा, और 7 दिन काम किया मैंने, रेस्ट भी नहीं किया। तो बाबा से एक एक अनुभव होना चाहिए, मां का अनुभव क्या है, बाप का अनुभव क्या है, बाप के रूप में त्रिनेत्री बना देता है बाबा, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना देता है, सदर्शन चक्रधारी बना देता है, और सदगुरु के रूप में त्रिलोकीनाथ बना देता है। ऐसे एक एक संबंधों के रूप में सारे बोझ ले लेता है हमारे, लौकिक अलौकिक बोझ, सखा के रूप में जो बात किसको नहीं बता सकते उसको बता सकते हो, साजन के रूप में हमें दैवी गुणों से सजा देता है, सर्जन के रूप में जो कीड़े ना आत्मा में कीड़े लगे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, आज भी बाबा ने कहा वो कीड़ों को, कीटाणुओं को था ना, वरदान था ना, पुराने संस्कारों के कीटाणुओं को निकालता रहता है, ऑपरेशन करता रहता है, हम फिर आंखों से डाल लेते हैं, कान से डाल लेते हैं, मुंह से डाल लेते हैं, वो कीटाणु निकालता है, हम फिर डाल देते हैं, टीवी देखा गए ना अंदर कीड़े, नहीं गए कीड़े अंदर जाके बैठ जाते, फिर दोबारा से कि लोगों से मिले जुले कुछ बात हुई तो फिर कीड़ा अंदर जाके बैठ गया, फिर वो निकालता है, तो सारा दिन ऑपरेशन करता रहता है वो, तो और हम डालते रहते हैं ना। इसलिए जो डायरेक्शन है ना, नियम है, नियम और मर्यादाएं बहुत जरूरी है, तो ये हमें समझने की। तो इसलिए जितना भी हम लोग, तो सरल संबंधों के साथ, किसी और संबंध की अनुभूति किसी और से कर लूं मैं, किसी देहधारी से नहीं, हर संबंध की अनुभूति बाप से जो कर सके, ऐसा व्यक्ति चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय सूक्ष्म वतन में रहता है। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतनधारी बनो, नहीं सूक्ष्म वतन में रहो, सूक्ष्म वतनवासी बनो, अपने मन बुद्धि को शुद्ध रखो, संस्कार को शुद्ध बनाते जाओ, नियम मर्यादाओं को फॉलो, नियम 4 नियम, अमृत वेला, मुरली और सारा दिन अटेंशन, बाबा ने जो कहा वो मुझे करना है, उस पर मनन चिंतन मंथन से मनन, मनन मनना रिवाइज करो, चिंतन माना गहराई में जाओ मुझे कैसे बनूं, और चिंतन मंथन माना क्या करूं, बाबा उसका सार देगा, मक्खन देगा, और सिमरण माना उसको कार्य में लगाओ, रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमर सिमर सुख पाओ ना कार्य में लगाओ, जो मक्खन मिला उसको खाओ कार्य में लगाओ, तो वो अंदर रिकॉर्ड हो, नए संस्कार बन गए। और फिर अटेंशन, फिर चौथा है सोने के पहले वेंटिलेशन। वेंटिलेशन माना सोने के पहले क्या करो, बाबा की याद में चार बातें, उसमें भी चार बातें, लेटर लिखो पहले बाबा को, सारी बात उसको बताओ, बाबा ऐसा ऐसे मेरे से आज सुबह ये मैंने ठीक किया, ये गलत किया, यहां गलती हुई, यहां पर देखने में, सोचने में, बोलने में, खाने में, सुनने में, हाथ पैरों से कुछ गलती हुई, बाबा ये गलती हुई, तो अपने मन की हर बात उसको बता दो, साइन करके बाबा को दे दो, फाड़ के डस्टबिन डाल दो। 000 उसका वो है, फैक्स नंबर है, हॉटलाइन फैक्स है, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, सारे दिन में जो बीत गया मल्टीप्लाई बाय 0, सब खत्म नहीं। और फिर चार्ट भरो याद का सच्चा सच्चा, और उसके बाद फिर मुरली पूरी पढ़ो, पूरी मुरली पढ़ो ताकि मन प्लेन हो जाए, और फिर 3 मिनट योग करके सोचो, ये चार बातें सोने के पहले जरूरी है। फिर नींद को गहरी आती है, और उस टाइम कर दो बाबा मुझे 3:30 उठा देना, बिना स्पीकर के आपके नींद खुल जाए, और इतना फ्रेश होकर उठोगे 9:30 सो जाओ, 9:30-9:45 से सो जाओ, देर मत लगाओ, 6 घंटा सोना जरूरी है, जब तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनी है तो 6 घंटा सो जाओ, 9:45 सो जाओ, 9:45 उठ जाओ, और मुंह हाथ धो के ब्रश करके फिर बैठ जाओ। तो चार नियम पक्के, और चार परहेज, ये चार गोली मैं कहता हूं, चार गोली। परहेज क्या है? पहला पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तक भी पवित्रता, वैध संकल्प भी है पवित्रता, ऐसा क्यों करता, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों करती, अरे ड्रामा में उसका पार्ट है, बाबा एक्सेप्ट करता है, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, आप क्यों, ये भी तो अपवित्रता है ना। और फिर लगाव झुकाव, किसी के प्रति लगाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, झुकाव उसके प्रति, उसकी बात सुन के कान उधर चला जाता है, प्रभाव, किसी के प्रभाव में, किसी के प्रभाव में नहीं आना, एक बाबा के प्रभाव में रहना, लौकिक ना अलौकिक, और टकराव किसी से नहीं रखना। तो ये पवित्रता, जितनी पवित्रता बढ़ते उतना अमृत वाला पावरफुल होगा, उतना मुरली अंदर जाके बैठ जाएगी, उतना अटेंशन रहेगा सारा दिन बाबा की मुरली पर, और वैसा ही व्यक्ति सच्चाई से वेंटिलेशन करेगा, हर बात बाबा को सच्चाई से बताएगा। और फिर दूसरी बात, दूसरा शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, फल सब्जियां अंकुरित दलिया रोटी सब्जी दाल ऐसी चीजें, दूध पियो, ये जो है ना, जो पराठा पकौड़ा समोसा राशिक भोजन है, ऐसा भोजन खाओगे तो आपको योग लगेगा नहीं, आलस आएगा, नींद आएगी, केयरलेसनेस आएगी। तामसिक उत्तेजना पैदा करने वाला भोजन, ये तो नॉनवेज तो खैर हम खाते नहीं, लहसुन प्याज भी हम खाते, ये भी उत्तेजना पैदा करते हैं इसकी बजाय, और दूसरे जैसे चाय कॉफी पीते हैं ना बहुत, ये भी उत्तेजना पैदा करता है, जैम्स खाते हैं, अचार खाते हैं, ये सब उत्तेजना पैदा करते हैं, चिंता इरिटेशन चिड़चिड़ापन बढ़ाते हैं, एसिड बनाते हैं ना, तो इससे इरिटेशन पैदा होती है, ऐसा भोजन नहीं खाओ। कितना भी योग लगा लो अगर ऐसा भोजन खाओगे तो योग लगेगा नहीं। और फिर सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग, दो ही चीज सत्य है, बाकी सब असत्य है, ठीक है। और चौथा दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुणों को धारण करो, कभी भी गुस्सा मत करो, एक बार गुस्सा किया 3 दिन तक योग नहीं लगेगा, एक बार चिंता की 18 घंटा योग नहीं लगेगा, ठीक है, उदास हो गए 5 दिन तक योग लगेगा नहीं। इसे इसको परहेज, जैसे सांप को छूता नहीं है, सांप को हाथ से पकड़ता नहीं है, ये सांप के माफिक है, इसको छूना नहीं, ओके। जैसे आपका सूक्ष्म शरीर पावरफुल होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और सूक्ष्म वतन वासी बन के हम रह सकेंगे। ओम शांति।
नई बातें लगी, इनका अभ्यास करेंगे ना और ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। अभी 1 मिनट के लिए बाबा की याद में तो बैठेंगे, तो हम डॉक्टर गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाबा ने ये बातें अलग ही तरीके से बच्चों को समझाई हैं, और कई बच्चों ने इनको अनुभव किया है, इन पर मनन चिंतन किया है, और हमसे शेयर करते हैं, तो हमें इसमें लाभ होता है। बाकी मैं गुप्ता जी से पूछ रही थी कि आजकल हमारे पास फोन आते हैं, जैसे कोर्स के लिए फोन आते हैं ना, तो ऐसे लोग पूछते हैं हमसे कि क्या आप ऑरा क्लीनिंग करते हो ना, लोग हमसे ये पूछते हैं। राइट, बिल्कुल, फिजिकल ऑरा की, और इसीलिए वो लोग वो जो ये जो क्रिलियन फोटोग्राफी जो लेते हैं वो भी फिजिकल हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत बॉम्बे में बहुत प्रचलित हो गया है। हाँ, ये स्पिरिचुअल हो रहा है। ऑरा स्पिरिचुअल होता है, ही होता है, ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल ही होता है। हाँ, वो फिजिकल है। ओम शांति। बहुत बहुत।